ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के संस्मरण से संस्थापित ये अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में अभी विशेष कार्यक्रम चल रहा है छांद्योग उपनिषद ज्ञान यज्ञ द्वितीय अध्याय में त्रयोविंश खंड पूरा हुआ था। सब कुछ ओंकार है, सर्वम ओंकार वेदम सर्वम। साम के उपासना कहा गया, उसके प्रसंग से हटकर के ओंकार आत्मा परमात्मा का प्रतीक ओंकार है, तो जो मोक्ष का हेतु है उसकी स्तुति करके उसका ही उपासना कहा। और यज्ञ में साम होम मंत्र उत्थान कुछ है आवश्यक जानना है, इनका उपदेश करते हैं। ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद वसूनां प्रातः सवनम रुद्राणं माध्यन्दिनं सवनम आदित्यानां च विश्वेषां च देवानां तृतीय सवनम। ब्रह्मवादिन वेद को जानने वाले जो वैदिक अर्थ के मर्मज्ञ है कहते हैं यद वसूनां प्रातः सवनम, प्रातः काले सवन करते हैं तो प्रातः सवन संबद्ध है वसु, प्रातः सवन के ईश्वर है वसु देवता, आठ वसु होते हैं, वसुनाम प्रातः सवनम। रुद्राणाम माध्यान दिन सवनम, और माध्यान दिन मध्यान काल में सवन करते हैं उसके ईश्वर है रुद्र देवता जो आकाश अंतरिक्ष लोक में है, और प्रातः सवन में है यही पृथ्वी में है वसु देवता है। आदित्यानां च विशेषां च देवानां तृतीय सवनम, आदित्य और विश्वदेवा अनंत विश्वदेवा द्वादश आदित्य है उनका तृतीय सवन, तृतीय काल में जो सवन करते उससे स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। तो भूर भुव स्व तीनों लोकों को ही प्रातः सवन के देवता वसुदेवता, माध्यान्ह देवता माध्यान्ह दिन है रुद्र हो गए, और अंतिम तृतीय सवन के देवता विश्वदेव आदित्य हो गए, ये सब वशीकृत कर ले उनको ही हो गया। भूर भुव स्व तीनों यदि उनके अधीन हो गया यजमान के लिए लोक कुछ नहीं रहा। वह तरी यजमान से लोक इति सयस्तम न विद्यात कथम कुरियात अथ विद्वान कुरियात। अब यजमान का लोक क्या रहा, कहाँ रहा? याग करते तो लोकाय भी यजते यु यजते तो लोक कर्मफल प्राप्ति के लिए करते हैं, और भू भुव स्व तीनों सब चला गया तो कुछ लोक नहीं रहेगा, तो यजमान कैसे याग करेगा? और वो जब किसी फल प्राप्त करेगा साम होम मंत्र आदि को नहीं जानेगा तो कैसे करेगा? जानेगा तो कर सकता है, तो उसको जानने के लिए अभी कुछ विशेष उपदेश करते हैं वो सामाधि का उपाय। पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणा जघनेन गार्ह प्रत्यस्य उदं मुख उपविश्य स वासवं सामाभिगायति। लोक प्राप्ति के लिए वह प्राप्त करेगा यजमान, कर्म करता है तो अवश्य ही फल प्राप्त होगा, कर्म फल दिए बिना नष्ट नहीं होता है, केवल ज्ञान से ही कर्म का नाश होता है, नहीं तो कर्म करेगा तो अवश्य ही फल प्राप्त करेगा। नाभुक्तम क्षेत्र कर्म कल्प कोटि सतैरपि, 100 कोटि कल्प बीत जाए तो भी कर्म किया है तो भोग के बिना नष्ट नहीं होगा। कुछ कर्म करते समय प्रायश्चित से कुछ नष्ट होते हैं, बाकी कर्म का फल भोगना पड़ता है। केवल ज्ञान से ही ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, नहीं तो कर्म फल भोगना पड़ेगा। तो यजमान के लोक कैसे प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा इसे कहते हैं। प्रातर अनुवाकस्य उपाकरणात प्राक, उपाकरण प्रारंभ प्रातः काल में जो स्तोत्र पाठ करेगा उसके पहले गार्हपत्यस्य जघनेन उदंग मुख उपविश्य, गार्हपत्य अग्नि है उसके पश्चात जगन है ना पीछे भाग में उदम मुख उत्तर की ओर मुख करे बैठ करके स वासवम सामाभिगायति। वसु देवता संबंधी वासव, वसु से वासव बन गया, जो वसु देवता है साम के देवता है, प्रातः सवन करने से फल प्राप्त होता है वसु देवताओं का, तो वसुदेव संबंधी जो वासव स्वाम उसका गान करता है यजमान। लोकद्वारमपावारणो पश्येमत्वा वयं राहुं आज्यायो आइति। ये साम के मिला करके गान करते हैं। हे तो लोक द्वारम अपावरुणु पश्येमत्वा वयम राहुम आज्याय आइति। ये भाष्य में स्पष्ट काली वाक्य है। बीच में ऐसे दीर्घ आ लो तीन लिखाए तो तीन मात्रा उच्चारण वा, जहां दो बार तीन आया तीन तीन छह बार हो जाएगा। ऐसे लोक द्वारम पृथ्वी लोकों की प्राप्ति के लिए पृथ्वी लोक का जो द्वार है द्वारम अपावर्णु उसको अपा हटाइए अपावृणु अपावृणु हटाइए। अग्नि देवता संबोधन करते हैं अग्नि पृथ्वी लोक प्राप्ति के द्वार को हटाइए द्वार खोले। पश्चिम त्वा वयम त्वाम वयम पश्चिम हम आपका दर्शन करें। इसलिए राज्याय राज्या कहने के लिए बीच में हुम एक आ गया अनर्थक शब्द राज्याय हुम आ इस बीच में लंबा करने के लिए राज्य उस प्राप्ति के लिए हमको ये दर्शन करेंगे आपका हम आप इस लोक की प्राप्ति करेंगे द्वार खोलिए। ऐसे प्रातः काल यजमान गान करता है शाम वसुदेवता की प्रार्थना करता है उसके बाद हवन करता है यजमान। अथ जुहोति नमोग्नये पृथ्वी क्षेते लोक क्षेते लोक में यजमानाय विन्देश यजमानस्य लोकेतास्मी। अथ जो हवन करता है मंत्र बोल करके नमो अग्नये अग्नि के नमस्कार है अग्नि के पृथ्वी क्षेते पृथ्वी जो वास करते हैं पृथ्वी क्षेते पृथ्वी निवास जिनका लोक क्षेते लोक में निवास करने वाले लोकम में यजमान आय विन्द मेरे लिए लोक यजमान के लिए लोक प्राप्त कराओ। ये सभी यजमान से लोक यही पृथ्वी यजमान का लोक है कर्म फल है ए तास्मी मैं इसको प्राप्त करूंगा मेरे लिए खोलो। ऐसे हवन करता है प्रार्थना करता है। अत्र यजमान परस्ताद आयुष स्वाहापजही परिघमित उत्तिष्ठति तस्मै वसव प्रातसवनं संप्रयच्छन्ति। अत्र इसमें इस लोक में यजमान आयुष परस्ताद आयु समाप्त होने समय पर समय में परस्ताद बाद में अर्थात मरने मरते समय जब मर जाता है स्वाहा कह करके हवन करता है। इसे पहले हवन करता है कहता अपजघी परिघम अपजघी का तो हटाओ जो परिघ है लोक द्वार में अर्गल रुकने वाला है परिघ अर्गल रुकने वाला है उसको हटाओ। ये तुक्त्वा उत्तिष्ठति ऐसे कह करके उठकर खड़ा हो जाता है। जब उत्तिष्ठति तस्मै वसव प्रात सवनम संप्रयच्छन्ति वसुदेवता प्रात सवन के ईश्वर पृथ्वी लोक है भूलोक उसको वशीकृत करके है और इसे जैसे प्रार्थना कर हवन करता है तो प्रातः सवन का फल इसी लोग उसको देते हैं फल प्राप्त करते यजमान को। इसी प्रकार प्रार्थना करके भूलोक भूवलोक स्वर्लोक को प्राप्त करता है यजमान। इसे बताएंगे एक अवयव केवल प्राप्त हुआ भूलोक की प्राप्ति हुई वसु देवताओं से प्रार्थना करके। आगे माध्यम दिन सवन के देवता रुद्र अभी प्रार्थना करेंगे। पुरा माध्यम दिन से सवन से उपाकरणा जघने नग्निध्रिय से उदंगमुख उपविश्य सरौद्रम सामाधिगायति। माध्यम दिन से सवन से उपाकरणात पुरा पहले माध्यम दिन सवन जो आरंभ करता है पहले अग्निध्रिय से जघने न अग्निध्रिय है दक्षिणाग्नि का नाम गार्हपत्य अग्नि आहवनी अग्नि और एक दक्षिणाग्नि कहते हैं। दक्षिणाधिक संबंध है अग्निधीर से पीछे भाग में बैठ करके उदंग मुख उत्तर के मुख करके बैठ कर उपविश्य स रौद्रम साम अभिया तो रुद्र देवता संबंधी साम का अभियान करता है यजमान। पहला है वसु देवता संबंधी, द्वितीय रुद्र देवता संबंधी। लोकद्वारम अपावारणो पश्चिमत्वा वयम् वैराहुम् आज्यायो इति। ऐसे साम गान करता है। लोकद्वारम अपावरुणु दक्षिणाग्नि से प्रार्थना करता है। दक्षिणाग्नि नहीं वो रुद्र देवता है तो दक्षिणाग्नि के पास बैठ करके प्रार्थना करता है लोक के द्वार को खोलिए। पश्चिम वयम आपका दर्शन हम करेंगे और किस लिए वैराज्याय विराट स्वरूप उस रुद्र देवता को प्राप्त करने के लिए। होम आज या वैराज बीच में होम ऐसे स्तोभ है अनर्थक शब्द है उसको दर्शन करे उसको प्राप्त करे ऐसे प्रार्थना करके फिर अथ जुहोति नमो वायव्य अंतरिक्ष क्षिते लोक क्षिते लोकम में यजमानाय विन्दे सवे यजमानस्य लोकेतास्मि अत्र यजमान परस्तादायुष स्वाहा अपजहि परिघमितुक्तो तिष्ठति तस्मै रुद्रमाध्यं दिनं सवनं संप्रयच्छन्ति। अथ जुहोति हवन करता है यजमान। नमो वायवे वायु को नमस्कार, वायु के चतुर्थ अंध वायु देवता को नमस्कार। जो वायु देवता अंतरिक्ष में वास करते अंतरिक्ष क्षिते अंतरिक्ष में निवास करने वाले और इस अंतरिक्ष लोक क्षिते भूवलोक में वास करने वाले लोकों में यजमान है विंद मेरे लिए लोक प्राप्त कराओ। ऐसे भी यजमान से लोक है ये यजमान का लोक है अंतरिक्ष लोक मैं प्राप्त करूंगा। अत्र यजमान पुरस्ताद फिर आयु समाप्त होता है उस समय में स्वाहा कर हवन करता है प्रार्थना करता अपजही परिघम इतुक्त्वा उत्तिष्ठति। परिघ जो अर्घल द्वार में रुकने के लिए उसको हटाओ कहकर उठता है। तस्मै फिर रुद्रा माध्यम दिन सवनम संप्रयच्छन्ति जो माध्यम दिन सवन के देवता है रुद्र देवता उसको दे देता अर्थात उसका फल दे देते है भूवलोक अंतरिक्ष लोकों को देते हैं। पुरा तृतीय सवन से उपाकरण जघन नाहवन्य उदंग मुख उपविश्य स आदित्यम स वैश्वदेव सामाधिगायति। तृतीय सवन के आरंभ के पहले आहवन्य अग्नि के जघन पश्चात भाव में रह करके उदंग मुख उत्तर को मुख करके उपविश्य बैठ करके स आदित्यम और वैश्वदेव क्योंकि आदित्य ही देवता विश्वदेव ही देवता है तृतीय सवन का। तत्सबंधी वैश्वदेव विश्वदेव संबंधी साम गान करता है यजमान। वैसे प्रकार साम गान जिससे पहले आया लोकद्वारम अपावारणो पश्चिमत्वा वयं स्वारा आजायो इति। लोकद्वारम अपावरुणु ये तो गान करने के लिए इसे शाम का आरंभ कर गान करते अर्थत ही लोक के द्वार को हटाइए। पश्यम त्वाम आपको हम दर्शन करे वयम का हम आपको दर्शन करे स्वराज्याय स्वराज्याय कहने के लिए बीच में हुम आ यो ये से लंबा करने के लिए बीच में कुछ हुम शब्द है स्तोभ कहते हैं अनर्थक शब्द किंतु गान करते समय जैसे कहा गया ऐसे बोलना है स्वराज्याय लंबा करके शाम गान करते इति। आदित्यमथ वैश्वदेव लोक द्वारम अपावरुणो पश्येमत्वा वयम् साम्राहुम् आज्यायो इति। आदित्यम अथ वैश्वदेव आदित्य और वैश्वदेव देवन के लिए कहता है लोक द्वार मपावनु लोक द्वार हटाइए। पश्यम त्वावयम साम्राज्याय साम्राज्य प्राप्ति के लिए लोक द्वार आदित्य वैश्य दोनों के लिए से प्रार्थना करता है। साम्राज्य प्राप्ति के लिए साम्राज्य प्राप्ति के लिए हमारे लिए रास्ता खोलो। उसके बाद हवन करता है। अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिविक्षिद्भ्यो लोकक्षिद्भ्यो लोकम् यजमान विन्दत। अथ हवन करता है। नम आदित्येभ्य आदित्य द्वादश आदित्य सबको बहुवचन नमस्कार है। विश्वेभ्य देवे अनंत विश्वदेव है सबको नमस्कार। जो स्वर्ग में वास करने वाले दिविक्षिद स्वर्ग में वास करने वाले के लिए लोक क्षिद लोक में निवास स्वर्गलोक में निवास करने वाले उनको नमस्कार है। लोकों में यजमान आय विन्दत मेरे लिए यजमान के लोक प्राप्त कराओ। एष वे यजमान से लोक एतास्मि अत्र यजमान परस्तादायुष स्वाहा अपहत परिघमितुक्तो तिष्ठति। यजमान का लोक में प्राप्त करूंगा। आयु समाप्त होता है स्वाहा कर हवन करता है प्रार्थना करता है तो अपहत परिघम परिघ अर्गल को हटाए ये कह करके उठता खड़ा होता है। फिर उसको देवता देते हैं। अर्थात यजमान इस प्रकार जान करके प्रार्थना करता है वही लोगों को प्राप्त करता है। भूर भूव स्व लोक प्राप्ति का साधन साम गान करना पड़ता है होम करना पड़ता है मंत्र बोल के लिए प्रार्थना करना पड़ता है फिर उठकर खड़ा होना है। साम होम मंत्र उत्थान साम गान होम मंत्र गान प्रार्थना फिर उत्तिष्ठ खड़ा होता है तब तो देवता प्रसन्न होकर के देते हैं। सब भूलोक भूलोक अंतरिक्ष तीन सब लोग देवता उसको देते हैं। आदित्याश्च विश्वदेवाश्च तृतीय सवनम संप्रयच्छन्ति एषः वै यज्ञस्य मात्रां वेद एवं वेद एवं वेद। आदित्य विश्वदेवा तृतीय सवन के फल उसको देते हैं। एषः वै यज्ञस्य मात्रां वेद ये जो यज्ञ के इसी को अंश को जानता है तो उसको कर्म फल प्राप्त होता है। इसे जान करके कर्म करता है फिर ये यजमान ऐसी प्रार्थना करता है वही देवता प्रसन्न होकर उसको फल देते हैं। यज्ञ के कुछ अंश को जान करके उपासना करने के लिए पहले कहा साम गान करना हवन करना मंत्र बोलना उठकर खड़ा होना ये सब बताया था फल प्राप्ति के लिए उपदेश किया। आगे यज्ञ आदि कर्म जितने करते हैं सारे कर्म का फल होता है आदित्य भगवान। सारे प्राणी के कर्म फल होता जितने पदार्थ की सृष्टि होती है सब प्राणियों के कर्म फल आदित्य भगवान तो प्रत्यक्ष है सर्व प्राणी उसको उसमें आश्रित है। उदय समय के दिन रात होता है काल होता है ताप देने से सस्य वृक्ष आदि वृष्टि आदि भी होती है ये सूर्य भगवान के कारण ऋतु परिवर्तन होता है ते सब प्राणियों से उपकृत होते अन्न आदि प्राप्त करते हैं। तो सारे प्राणी के कर्म फल होता प्रत्यक्ष दिखता है तो यज्ञ का फल रूप है आदित्य भगवान। यज्ञ के कथन के बाद अभी सूर्य विषय की उपासना है। यह जो उपासना है सर्व पुरुषार्थेभ्य श्रेष्ठतम फलम भगवान भाष्यकार कहते जितने पुरुषार्थ है धर्मार्थ कर्म मोक्ष सबसे श्रेष्ठतम फलम उत्कृष्ट फल है ये कहने के लिए आरंभ करते हैं। मधु विद्या इसको कहते हैं। इसे मोक्ष के फल के मोक्ष फल का साधन तो ज्ञान ज्ञान प्राप्ति के लिए भी ऐसे उपासना बहुत अंतरंग है अंतगुण शुद्धि के लिए। अन्य जितने भक्ति उपासना लोक प्रसिद्ध है स्मार्त उपासना उसके अपेक्षा श्रौत उपासना अत्यंत उत्कृष्ट है। ऐसे जो उपासना करते है स्वल्प भी करते स्वल्पम अप्य भय त्रायते भय महान ये जो उपासना आदि थोड़े से भी करता है तो भी संसार भय से रक्षा करती उपासना श्रद्धापूर्वक जितने यथासंभव करे अंतगुण शुद्धि का बहुत साधन है। एक मधु विद्या है बड़ी श्रेष्ठ इसको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। अशोवादित्यो देव मधु तस्य देवरेव तिरश्चिन वंशो अंतरिक्षम पूपो मरीचय पुत्रा। असौ वे आदित्य देव मधु असौ व दूर में से असौ शब्द का अध्यक्ष शब्द आदित्य वो आदित्य को देखा रोज आदित्य है देव मधु देवताओं के मधु है, ऐसे मधु अत्यंत सुख के हेतु है, प्रिय होता है। इसी प्रकार देवताओं के प्रसन्नता के हेतु उत्कृष्ट है देव में मधु है, और वसु आदि सब देवताओं के प्रसन्नता का हेतु है, यज्ञ कर्म फल रूप है, इसे मधु है। मधु होने के लिए जैसे लोक में मधु है, मधु होने के लिए कोई वृक्ष के शाखा आदि में शाखा भी ऐसे सीधा ऐसा शाखा में मधु नहीं, थोड़ा टेढ़ा उनसे मधु लगता है, तो उसमें तिरस चिन्ह कहते टेढ़ा, कहीं बांस भी लगते हैं मधु, बांस सीधा सीधा कहीं टेढ़ा है तो उसमें मधु लग जाते हैं। तो ये यदि आदित्य देव मधु है किस में लगा लटका हुआ, तो कहते तस्य देव रेव तिरश्चिन वंश, देव हो गया तिरश्चिन टेढ़ा रे वंश स्वर्ग, ऐसा टेढ़ा है तिरश्चिन वंश। जैसे मधुमक्खी का मधु लगाते हैं तो टेढ़ा काष्ट वंश में लगाते हैं, और उसमें मधु जब लगाते हैं वंश में एक अपूप मालपा जैसे दिखता है, अपूप शब्द से कहते उसको पिष्टक कहते है, केक जैसे इसे बना हुआ अपूप, उसको अपूप कहते मधु का, अपूप मालपुआ आदि पुआ आदि को कहते तो मधु अपूप उसको कहते हैं। यो नीचे वांश में लटका हुआ, यहाँ अंतरिक्षम अपूप, जिस प्रकार ये वांश तिरश्चिन वंश में से अपूप लटका हुआ, इस बार तिरश्चिन वंश हो गया स्वर्ग, स्वर्ग के नीचे क्या लटका हुआ अंतरिक्षम, अंतरिक्ष हो गया उसका अपूप के समान है। मरीचय पुत्रा, और सूर्य भगवान की किरण सब है, आदित्य हो गए मधु है, देवता आदित्य हो गए मधु, और सूर्य भगवान के जो किरण है वो तो पुत्र, ऐसे मधुमक्षी का पुत्र होते कर्म करते मधु करते हैं। तसे ये प्रांचो रश्मयस्ता एवस्य प्राच्यो मधुनाड्य ऋचय मधुकृत ऋग्वेद पुष्पम ता अमृतापस्ता वा एता ऋच, प्रांच रश्मय पूर्व दिशा में जो रश्मि किरण सूर्य भगवान के आदित्य मधु है, तो पूर्व दिशा में जो रश्मि है ताय वसे प्राच्य मधु नाड्य, पूर्व दिशा में होने वाले मधु की नाड़ी, मधु अपूप जो होता है उसमें छिद्र रहता है, ऐसे बड़े अपूर होता है उसमें छिद्र रहता है, मधु को रा करके उसे मधु रखते हैं। ऋचय व मधुकृत, ये मधु बनाने के लिए मधु करने के लिए ऋचा ही है, ये मधुकर होते हैं, मधु करने वाले मधुकर भ्रमर, भ्रम पुष्प से रस ला करके मधु बनाते हैं, तो मधुकृत है मधु करने वाले, मधुकृत मधुकृत कौन हो गया ऋचा, जो ऋचा है श्लोकात्म ऋचा है वो सब मधुकर जैसे होगी। नाड़ी तो छिद्र हो गया प्राचीन पूर्व दिशा में होने वाले छिद्र रश्मि है मधुनाड़ी है, ऋचा हो गए मधुकर हो गए, मधुकर मधु लाएंगे कहाँ से लाएंगे, पुष्प से लाते हैं, पुष्प क्या है ऋग्वेद पुष्पम, ऋग्वेद हो गया पुष्प, ऋग्वेद शब्दात्मक नहीं लेना, यहाँ लेना ऋग्वेद विहित कर्म, ऋग्वेद के द्वारा जो विहित कर्म उस कर्म से पुष्प लाएंगे कर्म फल। ता अमृताप, ये सब कर्म फल हो गया, उसमें से ऋग्वेद पुष्प हो गया, ऋग्वेद भी तो कर्म, कर्म फल पुष्प में सार रस होता है, कर्म करते समय पुष्प स्थान ऋग्वेद हो गया कर्म, उसे लेकर के ऋचा लोग मधु संपादन करेंगे, मधु जल सूक्ष्म अंश लाएंगे, ये यज्ञ करते समय सोम घृत दुग्ध आदि आहुति देते हैं अग्नि में, घृत भी दुग्ध भी दधि भी समय देते हैं, वो सब पाक से संपन्न होकर के अमृत रूप हो जाता है, वो रस हो जाता है, वही हो गया आप पुष्प में रस हो गया। ऋग्वेद पुष्प हुआ, ऋग्वेद भी तो कर्म, ऋग्वेद भी तो कर्म, पुष्प में रस होता है तो कर्म में रस क्या, कर्म में प्रयोग किया जाता है यज्ञादि कर्म में सोम घृत दुग्ध दधि आदि, यही हो गया जैसे पुष्प में रस वेद भी तो कर्म का कर्म में से होता है, जो अग्नि में डालते हैं तो पाक से होकर के वही अमृत रूप रस वाले जल होते हैं, उसी रस को ला करके बनाते हैं। तामृत आप हो, अमृत तुल्य जल के समान है, ताबायत ऋच, ये सब हो गए ताबायत ऋच, ऋच एवं मधुकृत, मधुकृत ला करके बनाते हैं, ताबा यथा ऋच पुष्प से रस लेकर के भ्रमर इसको बनाते हैं, ये ऋच है भ्रमर, ता उसको लाते हैं भ्रमर, ऋच है भ्रमर आया था, ऋचा है मधुकर, उस रस को लाते हैं। एतम ऋग्वेदम अभ्यतपंश तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इंद्रियम वीर्यम अनाद्यम रसो जायत। ऋग्वेद वही तो कर्म हो गया, पुष्प स्थानीय हुआ, उसको तपाय अभिताप किया, ऋचा रूप ऋचा जो है मधुकर हुए, कर्म में ऋचा का गान करते हैं, ऋचा का श्लोक का जो गान करते हैं, ऋग मंत्र के द्वारा कर्म संपन्न होता है, तो ऋग मंत्र हो गए कर्म मधुकर, मधुकर उसको तपाते हैं, पुष्प स्थानीय कर्म को तपाते हैं, तपाने पर पुष्प जैसे भ्रमर खींच करके रसनाते पुष्प से, इसी प्रकार ये ऋचा मधुकर हो गए उसको खींच कर लाते हैं रस, ऋग मधुकर उसे लाते हैं, जो रस लाते हो कौन है, जो रस हो गया ऋग वेदम अभ्यत तस्य अभितप्त यश तेज इंद्रियम वीर्यम अनाद्यम, ये रस हुआ, ये रस हो गया यश, पहला हो गया यश, कर्म करने से कर्म से यश होता है, जो सुनने में आता है कीर्ति, सुनने में यश है, अब यश का तेज होता है देहगत दीप्ति चमक, इंद्रियम सामर्थ्य होता इंद्रिय, इंद्रिय वैकल इंद्रिय विकल नहीं होता है, वीर्य हो गया बल सामर्थ्यम, ये सब हो गया कर्म से होता है, और अन्नाद्यम अन्नम च तदाद्यम च, अन्न जो प्रतिदिन देवता लोग स्थित के लिए ग्रहण करते हैं, ये सब रस उत्पन्न होता है किसे, यागादि रूप कर्म से, यागादि रूप कर्म उसी ऋग्वेद शब्द से पुष्प लिया कर्म, उसी से ही निकलता है रस। तद व्यक्षर तद आदित्यम अभितु आश्रय तद वा एतद यद एतद आदित्य से रोहित रूपम, तद व्यक्षर वी अक्षर विशेष रूप से निकला उसमें ले करके, तद आदित्यम अभी तो आश्रय तो उसको लेकर मधुकर आदित्य के दोनों तरफ लेकर उसमें रख दिया, आश्रय से रख दिया, वो आदित्य में जो रखा ऋग्वेद रूप कर्म साध्य कर्म से ऋग्वेद पुष्प स्थानीय हुआ उसके रस हो गया, मधुकर ऋचा लेकर के रखते हैं, वो मधु कौन है, एतद यद आदित्यस्य रूहितम रूपम, आदित्य में जो रक्त रूप दिखता है वही है, वही मधु है, एक मधु हुआ आदित्य में रोहित रूप हुआ, ऋग्वेद विहित कर्म साध्य पुष्प से रस निकला, ऋचा रूप मधु करे वो रस पका करके ला करके सूर्य में से रखा। अथ यस्य दक्षिणा रसमयस्ता एवस्य दक्षिणा मधुनाड्यो यजुन सेव मधुकृतो यजुर्वेदेव पुष्पम तामृता आप। अतः दक्षिणा रसमय दक्षिण दिशा में होने वाले जो सूर्य की किरण है तायव से दक्षिणा मधु नाड्य दक्षिणा समय होने वाले मधु की नाड़ी छिद्र है मधु नाड़ी मधु अपूप में इसे छिद्र रहता है दक्षिणा दिशा में। यजुन सेव मधुकृत पहले आया था ऋचा ही मधुकर यहाँ यजु मंत्र है मधुकर के समान हुए मधु ला करके रखेंगे मधु बनाएंगे। और पुष्प हो गया यजुर्वेद पुष्पम पहले आया था ऋग्वेद रूप पुष्प ऋग्वेद शब्द से ऋग्वेद विहित कर्म लेना यहाँ यजुर्वेद विहित कर्म लेना यजुर्वेद में जो विहित कर्म करते हैं कर्म करने पर यही मधुकर उसमें कर्म करते समय यजुर् मंत्र का गायन करते हैं वही मधुकर उसमें संबद्ध है यजुर्वेद विहित कर्म में ये पुष्प हो गया। वो पुष्प से जो रस लाएंगे ता अमृता आप कर्म में प्रयोग करते हैं सोम आज्य घृत दधि दुग्ध आदि वही अमृत आप है रस हुआ। तानि वा आप तो जल है वो कर्म में जल स्थानीय है उनको तपा करके उसमें रस निकालते हैं। तानि वा एतानि यजुंशेतम यजुर्वेदम अभ्यतपंश तस्याभि तप्तस्य यश तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो जायत। तद व्यक्षर तद आदित्यम अभितोश्रयत तद वा एतद यद एतद आदित्यस्य शुक्लम रूपम तानि वा एतानि यजुंसी यजु मंत्र है जो मधुकर हो गए एतम यजुर्वेदम अभ्यतपन मधुकर मधु निष्पन्न करते हैं। यहाँ पुष्प को मधुकर जा करके उसमें तपा करके रस निकालते हैं, अपने आप रस बह जाता नहीं, मधुकर जाकर के उसमें शब्द करते कुछ करने पर तपाने पर उसमें रस निकलेगा। यजुर्वेद विहित कर्म को में जो यजुर्वेद मंत्र का प्रयोग हुआ इससे ही ताप हुआ तो तप्त होने पर उसमें से पुष्प से रस निकला। वो यश रस क्या है जैसे पहले बताया यश तेज इंद्रियम वीरियम अन्नाद्यम रस हो जाए तो जैसे कीर्ति है तेज दीप्ति शरीर में सामर्थ्य युक्त इंद्रिय को इंद्रिय कहा वीर है बल रन्न आद्य रूप देवताओं के भोग्य रस मधुरस उत्पन्न हुआ तद्वी विशेष रूप से निकला तद आदित्यम अभिदवस आदित्य में जाकर के आश्रित तो हो गया। जो यजुर्वेद विहित कर्म से रस निकल करके यजुर्मंत्र रूप मधुकर ला करके मधु रखा सूर्य में वो कौन है तदवेतद यद एतद आदित्य से शुक्लम रूपम। आदित्य में रक्त रूप पहले कहा था ऋग्वेद विहित कर्म साध्य पुष्प से पर रस निकला मधु, यहाँ शुक्ल रूप ही यजुर्वेद विहित कर्म साध्य उसे पुष्प से निकला और यजुर्मंत्र उसको ला करके आदित्य में रखे शुक्ल रूपम। अथ यस्य प्रत्यंचो रसमयस्तायवस्य प्रतीज मधुनाड्य सामान्यव मधुकृत साम वेद व पुष्पम तामृत आप। अथ यस्य प्रत्यंच रश्मय सूर्य के पश्चिम दिशा में होने वाले रश्मि किरण सूर्य भगवान से रश्मि सब उड़ जाते हैं। तायवस्य प्रतीच मधुनाड्य जो मधु अपूप है अंतरिक्ष है स्वर्ग में लटका हुआ उसमें मधु पश्चिम दिशा को होने वाले मधु छिद्र है नाड़ी जैसे स्वर्ग में सामान्य व मधुकृत या मधु करने वाले बनाने वाले मधुकर हो गए साम मंत्र साम वेद व पुष्पम पुष्प स्थान हो गया साम वेद शब्द से लेना साम वेद विहित कर्म साम वेद विहित कर्म का जो फल होगा रस निकलेगा वही पुष्प में रस मधु और साम रूप मंत्र उसे रस गुण लेंगे। ता अमृत आप कर्म करते समय घृत दुग्ध दधि सोम आहुति देते हैं वही अमृत देवता के भोग्य अमृत जल तानिवाये तानि सामान्येतं साम वेदम अभ्यतपंस्तस्याभितप्त यशस् तेज इंद्रियम वीर्यम अनाद्यम रसो जायत। तानिवाये तानि सामानि जो साम वेद वित कर्म पुष्प स्थान हुआ कर्म फल एतम साम वेदम अभ्यतपन ये सामानि है मंत्र साम वेद हो गया साम वेद भीत कर्म को तपाया एक साम है मंत्र का नाम एक साम है वेद का नाम। पहले जो बताया मधुकृत है साम मंत्र है इसी पर ऋग मंत्र है मधुकृत यजुर् मंत्र है मधुकर तीन पर्याय में अभी आया। प्रथम पर्याय में मधुकर हो गए ऋचा रूप मंत्र श्लोकात्मक द्वितीय पर्याय में यजु गद्यात्मक मंत्र हो गए मधुकर अभी तृतीय पर्याय में साम रूप जो मंत्र है मधुकर हुआ। मंत्र साम रूप मंत्र ऋग्वेद में भी है यजुर्वेद में भी है और मधुकर साम रूप मंत्र हुए साम वेद विहित कर्म करते कर्म में जो साम रूप मंत्र का प्रयोग होता है वो मधुकर साम विहित विहित कर्म साम वेद पुष्पम का साम वेद वेद शब्द से साम वेद भी तो कर्म लेना कर्म फल को पुष्प रूप से कहा कि उसमें ही रसन होगा कर्म फल वही अमृत जो घृत दुग्ध दधि सोम आदि वो अमृत आपोवा इनको साम मंत्र के साथ संबंध वही तपाना सामान्य एतम साम वेदम अभ्य तपन ये साम रूप मंत्र साम वेद विहित कर्म को पुष्प स्थानीय को तपाए वहां भ्रमर बैठ कर पुष्प में शब्द करके चुसते है तस्य अभितप्त से इसे तपने से उसे पुष्प से कर्म फल से निकला सार रस उसी को मधुकर लेकर के रखेंगे मधु अपूप में सूर्य भगवान के लटके हुए सूर्य भगवान ही मधु है लटके हुए मधु अपूप उसे मधु अपूप में रखते हैं। वो जो रस निकला तपने से वो यश कीर्ति है तेज दीप्ति है इंद्रिय सामर्थ्य युक्त इंद्रिय वीरम शरीर बल रन्नाद्यम अन्न और आद्य खाद्य है देवताओं का रस मधु उत्पन्न हुआ। वो जो मधु उत्पन्न हुआ उसको भी मधु को लेकर के मधु अपूप में रखते है। तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभिश्रय तद वाय तद यदि तद आदित्य से कृष्णम रूपम विशेषण निकला अक्षर पुष्प से सार रस आदित्यम अभिश्रय तो मधु को लेकर रखते तो आदित्य में आश्रित हो गया। जो अभी पश्चिम दिशा से मधु साम रूप साम वेद वित कर्म पुष्प स्थानीय हुआ उसमें से मधु ला करके साम मंत्र उसमें आदित्य में रखा तो उसको दिखाते तद वे तद यद एतद आदित्य से कृष्णम रूपम आदित्य में काला रूप है। एकाग्र होकर योगाभ्यास करने देखने से आदित्य चमक नहीं देख पाएंगे, फिर बहुत देर देखेंगे तो आंख खराब होता है देखना नहीं, इसे देखने पर अभ्यास करें तो बाद में देखेगा अंदर नील काला जैसे कोई घूमता है। ऐसा बचपन में जैसे देखते हैं सब तो देख लेते ऐसा देखते तो देखते 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 फिर अंदर कुछ जैसे नील कुछ काला दिखता है कृष्ण रूपम। अथ ये उदंचु रसमयस्तायीच्यो मधुनाड्यो अथर्वांगी रस मधुकृत इतिहास पुराणम पुष्पम तामृताप ते वायत अथर्वांगी रस इतिहास पुराणम अभ्यतपन तस्तप्त यशस्तेज इंद्रिय वीरमन्नाद्य न सोजात तद व्यक्षर तदादित्यम अभिश्रय तद वाये तद यदि तद आदित्य परं कृष्णम रूपम। उदंच उत्तर दिशा में जो रश्मि है सूर्य भगवान की किरण तायवस्य उदीच्य मधु नाड्य मधुप में नाड़ी छिद्र के समान हो गई मधुकर यहां हो गया अथर्व वेद अथर्व मंत्र अंगिरस ये मधुकर हो गया इसमें जो मंत्र है अथर्व के द्वारा अंगिरस के द्वारा दिष्ट मंत्र है अथर्व अंगिरस जो मंत्र दृष्टा होते उनके नाम पर मंत्र का नाम हो गया अथर्व है ऋषि अंगिरस है ऋषि उनके द्वारा दृष्ट जो मंत्र है उसका अथर्व अंगिरस का मधुकर होगी मंत्र। और इतिहास इतिहास पुराण ये पुष्प होगी ता अमृताप कर्म करते समय इस मंत्र के द्वारा जब साउत स्मार्त कर्म करते हैं घृत सोम दुग्ध दधि आदि डालते हैं वही अमृत आप जल स्तुल्य हुआ ते वायते अथर्वांगिरस ये अथर्वांगिरस मंत्र इतिहास पुराण में तो प्रसिद्ध है राम भागवत महाभारत को इतिहास कहते हैं वेद में कुछ मंत्र है उनको भी इतिहास पुराण शब्द से कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ करते समय पारिप्लव नामक एक ऋषि राजा परिवार से बैठेंगे उनको कुछ कथा सुनाए ऐसे अश्वमेध यज्ञ में कथा सुनाते ये अश्वमेध यज्ञ का अंग है। जो कथा सुनाएंगे उसको भी इतिहास पुराण इतिहास शब्द का अर्थ है इति ह आस इति ह आस आस मतलब था हुआ था ऐसा ही हुआ था इतिहास इति ह आस ऐसा ही हुआ था उसको कथन करते हैं तो उसे पारिप्लव नामक कथन करते हैं उनको वेद मंत्र को इतिहास पुराण शब्द से भी कहते हैं। ये विनियोग करके कर्म करते हैं ये मधु को तपाए ये मंत्र सब मंत्र उसमें तपने से अभी तप्तस्य यश तेज इंद्रिय वीर्यम अन्नाद्यम रस उत्पन्न हुआ सब पर्याय में यश कीर्ति तेज दीप्ति इंद्रिय सामर्थ्य युक्त इंद्रिय शरीर वालों को वीर्यम कहा और अन्न आद्यम देवताओं के भक्ष्य रस अमृत रस उत्पन्न हुआ वो भी विशेष रूप से निकल करके आदित्य के दोनों तरफ दोनों में व्याप्त होकर आश्रित हो गया तदवा एतद जो छिद्र है उसमें भर गया आदित्य से परम कृष्ण रूपम सामान्य कृष्ण रूपे और बहुत योगियों के एकाग्रता उनसे दिखता है अत्यधिक कृष्ण रूप है वही है उत्तर दिशा में से आने वाले मधु। अथ ये ऊर्ध्वा रसमयस्ताय ऊर्ध्वा मधुनाड्यो गुह्यायवादा मधुकृतो ब्रह्मेव पुष्पं तामृतापः ते वायते गुह्य आदेशा एतद् ब्रह्माव्यतपंस तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इंद्रियं वीर्यमन्नाद्यं सोजायत तद्व्यक्षर तदादित्यम् अभितोश्रयत् तद्वैतद् यदि तदादित्यस्य मध्ये क्षोभत इव। सूर्य भगवान के ऊपर भी रश्मि है हमको तो नीचे भाग दिखता है, ऊपर नहीं दिखता है। ऊर्ध्व भी रश्मि है, ऊर्ध्व जो रश्मि है मधु के नाड़ी ही छिद्र हो गई। और गुह्या एवं आदेशा मधुकृत, मधुकर है गुह्य गोपनीय जो आदेश गुह्या आवे आदेश लोक द्वार में से विधान उपासना कहा। उपासना है कुछ कर्मांग संबंधी उपासना, जैसे पहला आया ओम इतेत अक्षर उद्गीतम अक्षर उपासित, कर्म अंग संबंधी कुछ उपासना है। लोक द्वार मपावृन कह कहा था, देव वसु देवता रुद्र देवता कर कहा था, ये तत्संबंधी जो उपासना है वो मधुकर हो गई है, मधु बनाएंगे। अब ब्रह्मेव कहा पुष्पम, पहले तो पुष्प हो गया ऋग्वेद विहित कर्म, यजुर्वेद विहित सामवेद विहित कर्म को पुष्प स्थानीय कहा था। यहाँ ब्रह्म हो गया शब्द के वेद संबंधी जब ब्रह्म आया, यह शुद्ध ब्रह्म नहीं लेना। यहाँ प्रणव रूप पुष्प, प्रणव को कहा ब्रह्म, ब्रह्म का वाचक प्रतीक होने से प्रणव ओंकार को कहा पुष्प, उसकी उपासना करने से थी तो पुष्प हो गया, पुष्प स्थानीय होगा। इसी प्रकार उसमें उपासना करने से जो सार निकलेगा वो मधु हो गया। तो इसमें यश तेज विधि अन्नादि निकला, वो जाकर के आदित्य में आश्रित हो गया। तद एतद आदित्य से मध्य क्षोभत एव, आदित्य में देखेंगे तो समाहित दृष्टि होकर देखते हैं आदित्य चलता घूमता चलता, जैसे ऐसे नहीं लगता है आंख तो खराब हो देखने पर, एकाग्र देखते 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 इसे हो जाता है, फिर बीच में काला काला दिखता है, फिर घूमता दिखता है कभी कभी देखने पर, इसे नहीं देखना प्रयास नहीं करना आंख खराब हो जाता है। पहले पहले इसे जो नहीं जानते देखते है बच्चे तो देखते है तो इसे देखते देखते दिखता है, आमने में देखा है वो देखने पर ऐसे ही दिखता है, ऐसे घूमता जैसे दिखी जाए जोर से, सब लोग सब से देखते हैं, उसे आंख खराब होता है, अच्छा नहीं है दिखना। किंतु सब ऐसे बचपन से कोई कहा देखो तो देखे, तो कौन देखता है, देख सब देखते चंद्र ग्रहण के समय चंद्र को देखने पर सीधा नहीं देखते हैं, तो कोई पानी आदि में रखे हल्दिया डाल के प्रतिमा को देखते हैं और उसको पूरा नहीं देखे, थोड़ा देखने के लिए साथ करते हैं, ऐसे करेंगे इधर इधर करेंगे, ऐसे थोड़ा सा पूरा नहीं थोड़ी सी देखना। और उसमें ग्रह नक्षत्र राशि नक्षत्र किसके लिए ग्रहण देखना किसको नहीं देखना ये भी सब बताते हैं, सबके लिए ग्रहण जिसके लिए अच्छा उठेगी जिसके लिए नहीं देखना चाहिए, तो ये सब है उसमें। क्षोभत ही वो हिलता जैसे लगता है, वस्तु तो हिलता है नहीं रहता किन्तु दिखता है, वही हो गया क्षोभत इव दिखता है, क्षोभत ही से संचलती जैसे। ते वाये ते रसाना रसा वेदा ही रसास्ते सामे ते रसास्तानि वा एतानि अमृतानाम अमृतानि, वेदा ही अमृतास्ते सामे एतानि अमृतानि। ये जो रस हो गए रसानाम रसा, रसों का भी रस है, रसों का भी रस है, रसों का रस कैसे हुआ, वेदा ही रसा वेद रूप पहले रस उनका भी सार, रसों का रस रस वेद हो गए रस, लोक उत्पत्ति के लिए सार हो गया, वेद से भी रूप सार निकला, लोक का सार निकलते समय वेद निकला वो सार हो गई, लोकों को अभिलक्ष्य कर तपाने से उसके वेद रूप सार निकला। ते वेद रूप रसों का भी सार, वैदिक कर्म करने से कर्म भाव को प्राप्त किया, वेद से कर्म विधान हुआ, उसी कर्म से कर्म करने पर विशेष रस निकला कर्म फल से, रोहित आदि रक्त रूप रक्त श्वेत कृष्ण आदि अलग अलग रस हुए। ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद भी तो कर्म करने से उसमें सार निकला, अत्यंत सारभूत हो गया रसों का रस। और अमृत का भी अमृत है, अमृत का अमृत क्या, वेद का सार होने से वेद तो अमृत है ही, वेद अमृत क्यों, वेद नित्य है, वेद नित्य है, अनादि निधन वेद आदि निधन रहित वेद है, अनादिकाल से वेद है। वेद का उपदेश भगवान सृष्टि के प्रारंभ में करते हैं, सूर्या चंद्रमसु धाता यथा पूर्व अकल्पयेत, जैसे जैसे वेद में जो जैसा है ऐसे ही उपदेश परमात्मा करते हैं प्रारंभ में, ईश्वर ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं, ब्रह्मा फिर वेद का उपदेश करते हैं। तो वेद का उपदेश करते समय ईश्वर में स्वातंत्र नहीं कि वेद एक अक्षर आगे पीछे कर देना, निश्वास जैसे अनायास निकलता है, मतलब जैसे पहले ऐसे ही बिना प्रयत्न उनको वो उपदेश कर देते हैं, और श्वास जैसे निकलता है तो एक अक्षर आगे पीछे नहीं होता, ऐसा अनादिकाल से वेद ऐसा है, पूर्व कल्प में ऐसा, उसके पहले ऐसा। मीमांसक लोग तो एकदम कहते कि वेद तो नित्य ही है, सृष्टि में सृष्टि प्रलय नहीं मानते। मीमांसक कहते वेद नित्य है, स्वतः प्रमाण वेद, वेद वाक्य प्रमाण। ये तो कुमार भट्ट ने मीमांसा दर्शन की ओर भारतीय लेकर के युक्ति देकर स्पष्ट कर दिया। जितने मत थे अभी अलग अलग मत चलते, अलग अलग मत वाले अलग अलग सब कहते बताते हैं, किन्तु उनका किसी न किसी पुरुष से आरंभ हुआ। कोई महर्षि हो, ऋषि हो, मनुष्य हो, कोई विशेष व्यक्ति का नाम लेंगे, उन्होंने उपदेश किया, उनसे प्रारंभ हुआ। किन्तु वेद का उपदेश होता है तो वहां किसी व्यक्ति से नहीं, ईश्वर जो उपदेश करते वो भी रचना नहीं करते हैं, इसलिए उसको पौरुषेय नहीं कहता, अपौरुषेय। यदि ईश्वर भी रचना करेंगे तो पौरुषेय हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर को भी पुरुष शब्द से कहते हैं। क्लेश कर्म विपाक आशीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक कर्म फल क्लेश अविद्यास्मिता रहित ऐसा शुद्ध पुरुष है। तो पुरुष के द्वारा रचित होगा तो पौरुष हो जाएगा। पुरुषों के वाक्य में पुरुष वाक्य प्रमाण होता है, अप्रमाण भी होता है। मनुष्य कुछ कहता है, उसको यदि ज्ञान ठीक प्रमाण से हुआ तब वो वाक्य भी प्रमाण होगा। उसको यदि भ्रम हो गया, राज्य में सर्प भ्रम हो गया, अच्छे व्यक्ति है, किसको झूठ नहीं बोलते, किन्तु उसको जो कभी झूठ नहीं बोलता तो भी भ्रम हो सकता है। राज्य में सर्प भ्रम हो गया, आकर सबको क्या कहेगा, बहुत बड़ा सांप है, नहीं जाओ। सब लोग उस वाक्य से ज्ञान हुआ, विश्वास कर ले, किन्तु शब्द जो ज्ञान हुआ भ्रम हो गया, क्योंकि उसको भी भ्रम था। शब्द कहने के लिए उसके पहले जो कारण ज्ञान, बुद्ध्वा शब्दान प्रयुक्त, शब्द प्रयोग करने के लिए उसका कारण होता है ज्ञान। ज्ञानी यदि भ्रम हो गया तो भ्रांत व्यक्ति शब्द कहेगा तो अप्रमाण हो जाएगा। कभी कभी जो ज्ञान हुआ, यथार्थ ज्ञान हुआ, किसी व्यक्ति ने देखा ठीक देकर आया, वो भ्रांत नहीं है, किंतु भ्रामक, स्वयं भ्रांत नहीं, दूसरे को भ्रम डाल लेता है, दूसरे को ठगने के लिए, जो ठगते हैं चोरी करते हैं इसे भ्रांति में डाल देते हैं, कुछ ना कुछ कह करके कहते बताया, कोई बताया, कोई आकर बताया आपकी गाड़ी चक्का में पंप कम हो गया, तो हटा दो उठ करके आकर देखे पंप कम, उस समय उनकी पत्नी में था, उसे कुछ लेकर चला गया। लोग इसे ठगने वाले चोरी करने वाले से करते हैं ना, अभी भी बताए थे कोई, तो ये करते ठगने वाले सुख होते वंचकम विप्रलंबकम, जो ठगने के लिए झूठ बोल दिया, तुम्हारे भाई बुलाता है, वो दूर का हटा चला गया, उसको बैठना था, वो जब चला गया उसी स्थान पर बैठ गया, उसको तो बैठना था, बहुत लोग बैठे जगह नहीं, आकर के आपके भाई बुला रहे इधर, उठकर गया है बैठ गया। तो ये सब विप्रलंबक होते हैं, पुरुष समय भ्रांति। फिर वो कुछ कहा झूठ बोल दिया, भाई बुला रहा है, वाक्य प्रमाण हुआ, प्रमाण नहीं। ये वाक्य पौरुष वाक्य में भ्रांति विप्रलिप्सा, कर्णापाटव कर्णपटु नहीं, बोलता चाह बोल, कभी कभी ऐसे होता है बोलना चाहते कुछ, क्योंकि बोलते समय कुछ दूसरा बोल दिया, कहीं बोलना चाहिए मालूम है कहना चाहिए सा, कहीं तो कहते समय कुछ दूसरा शब्द निकल गया, ऐसे ही हो जाता, कभी जीवा से कभी अलग शब्द निकल गया। कर्णपटु ने एकाग्रता ने कुछ बोल दिया, बाद में पता चला अरे मैंने तो गलत बोल दिया, जो बोलना था भूर भुव मह जन तप ऐसे कहते समय ठीक बोला ना, बीते स्व छूट गया, मालूम है बोलते समय भूर भुव मह जन ऐसे बोल दिया तो स्व छूट गया, जानते हुए भी कभी बोलते समय को छूट गया। इसी प्रकार कुछ कहते समय कभी गलती हो जाती, श्लोक सब कंठस्थ करते हैं, बोलो सुनाओ, सुनाते समय कभी कभी भूल हो जाती है, ऐसे कभी हो गया। ये सब पौरुषेय वाक्य में ये सब संभावना है कर्णापाटव, इसलिए पौरुषेय वाक्य प्रमाण कहकर सर्वदा प्रमाण नहीं होता है। इस वेद वाक्य प्रमाण इसलिए पौरुषेय नहीं है, पौरुषेय वाक्य में जो अप्रमाण्य की शंका कारण है भ्रांति विप्रलिप्सा कर्णापाटव, ये सब दोष की शंका अपौरुषेय वाक्य में नहीं है, नहीं होने का कारण वो प्रमाण है। इसलिए वेद मुख्य प्रमाण है, नित्य है। मीमांसक लोग कहते सृष्टि स्थिति प्रलय कुछ नहीं, स्थिति है प्रलय सृष्टि नहीं मानते, इसलिए अनादिकाल से वेद इसे ही वेद चल रहा है, नित्य है। कभी वेदांती कहते हैं जब आकाश आदि की सृष्टि होती है तो वेद फिर कहाँ रहेगा शब्द। वेदांती कहते आकाश आदि सृष्टि के समय वेद की भी सृष्टि में उपदेश करते परमात्मा। जब तक सृष्टि है तब तक वेद रहेगा, प्रलय काल में फिर नष्ट हो जाएगा, फिर सृष्टि फिर प्रलय, इसे वेदांती कहते हैं। वेद आकाश जैसे आकाश अभी है, इसी प्रकार वेद भी अभी है। तार्किक लोग कहते शब्द वेद भी शब्द है, शब्द होने के कारण जैसे उत्पन्न हुआ थोड़े एक क्षण के बाद रह करके नष्ट हो गया, फिर बोलेंगे तो वेद उत्पन्न होगा, इसी को नहीं मानते। मीमांसा के लोग को व्याकरण लोग कहते शब्द नित्य है, नित्य है। हम जो उच्चारण करते हैं शब्द है उसकी अभिव्यक्ति होती है, शब्द हम नया नहीं बनाते हैं, शब्द है उसकी अभिव्यक्ति। जैसे कोई पदार्थ है प्रकाश से उसकी अभिव्यक्ति हुई, आलोक से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, ऐसे शब्द की अभिव्यक्ति करने के लिए कंठ ताल अभिगात हम प्राण प्रयोग करते हैं तो शब्द है उसकी अभिव्यक्ति हो जाती, शब्द नित्य है। मीमांसक व्याकरण लोग कहते शब्द नित्य है। इसे यदि गुलाल घट बनाता है, दस घड़ा बना दिया, कहीं कुलाल में देखते देखते दस घड़ा, कितने घड़ा बनाया, दस बन गए। किंतु कोई गौ हो, गौ हो, गौ हो, दस बार उच्चारण किया, जब पूछेंगे कितने शब्द उसने किया, दस शब्द उच्चारण किया, गौ एक गौ शब्द क्यों बोला है बार बार, कितने दस बार बोला, क्या क्या बोला उसने, बोले नहीं कुछ नहीं, एक ही गौ 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 खाली बोल रहा है, एक ही शब्द बोल रहा है। घड़ा बनाने वाले एक ही प्रकार घड़ा बनाया, कोई कहेगा एक ही घटा को बार बार बनाया, नहीं वो तो एक घटा दूसरा दस घड़ा बना दिया। और उस शब्द उच्चारण करते समय बोलते दस शब्द बोला, बोले दस नहीं खाली गौ गौ बोलता है, एक ही शब्द बोल रहा है, कितने बार बोला, दस बार, दस बार, दस कृत गौ रीति ब्रूते, ये गौ शब्द आठ बार बोला, दस बार बोला, दस गौ शब्द बोला ऐसा नहीं कहते। और कुलाल घट बनाता है तो दस बार एक घट बनाया ऐसा कोई कहता है, दस घड़ा बनाए तो घड़ा दस हो गए, किंतु शब्द है कि दस बार उच्चारण किया, एक ही शब्द है दस बार उसकी अभिव्यक्ति हुई, ये प्रमाण है। शब्द नित्य है, उत्पत्ति नाश नहीं, उसका अभिव्यंजक उसकी उत्पत्ति ध्वनि हम करते अभिव्यक्ति करते। प्रकाश जलाए तो दिखा, प्रकाश बंद कर तो नहीं दिखेगा, फिर प्रकाश जलाए तो दिखेगा, फिर बंद तो नहीं दिखेगा। तो जितने बार प्रकाश जलाएंगे इतने बार इस पदार्थ की उत्पत्ति होती, बंद करते समय नष्ट हो जाता है, ऐसा होता है। प्रकाश जलाने से उत्पत्ति, प्रकाश बंद करते नष्ट, ऐसा नहीं। वो सब पदार्थ जैसे कैसे, प्रकाश जितने बार जलाए दिखा फिर बंद हो गया, दिखा फिर बंद हो गया, इसी प्रकार शब्द की उत्पत्ति नहीं अभिव्यक्ति होती है, शब्द नित्य कहते हैं। तो शब्द प्रमाण है, वेद अपरिचय है, अन्य जितने मत है सब किसी न किसी ने कहेंगे अमुक योगी ने कहा, अमुक ने उपदेश किया, अंत में कोई किसका नाम लेते हैं, उनको भले ही जितने कोई कुछ कहो किन्तु किसी का नाम लेकर उन्होंने ये मत चलाया, उन्होंने उपदेश किया। अरे वेद का उपदेश किसने क्या ऐसा नहीं है, जहां कहीं जो तो ये उपदेश आए, उपदेश मतलब उसको केवल ऐसे बोलते अनायास अपने मन से रचना नहीं। महाभारत पुराण रामायण पुराण आदि की रचना व्यास जी करते हैं, ये पौरुषेय है, इसलिए रामायण में भी कहीं भेद है, अलग अलग रामायण अलग अलग कहीं कहीं भेद है। महाभारत अभी बार बार होता है तो कभी पाठ भेद भी मिल जाता है, इसमें सब भेद हो सकता है, किंतु वेद में ऐसा नहीं, नित्य है अपुरुष वेद। तो वेद ही प्रमाण है, वेद ही मुख्य है, इसी वेद से ही ये रस सार निकला, वेद का सार है, वो हो गया प्रणव रूप है पुष्प, उसमें से मधु निकला, ये रस हुआ। अब इनका भी सार हो गया, ये रस है, रसानाम रस, वेदा ही अमृता, वेद हो गया अमृत, वेद की उत्पत्ति नाश नहीं, नित्य है। तेषाम एतानि अमृतानि, उनमें से अमृत निकले, जो रोहित रूप है, शुक्ल रूप है, कृष्ण रूप है, ये सब रस हो गए, यही मधु है। तद यत प्रथमम अमृतम तद वसव उपजीवन्ति अग्निना मुखेन, न वैदेवा अश्नन्ति न पिबन्ति, एतदेव अमृतम दृष्टा तृप्यन्ति। जब प्रथम अमृत निकला रोहित रक्त रूप है, ऋग्वेद संबंधी है, तो उसको वसुदेव उसमें आश्रित होते, प्रातः सवन के ईश्वर देवता वसु न उपजीवंती, अग्नि न मुख्य न, अग्नि प्रधान भूत होता है, अग्नि प्रधान होकर के उसका ही सेवन करते, सेवन करते अर्थात सब खा, न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्ती, देवता को चबा चबा खाते पीते ऐसा नहीं, वो केवल देखने से ही उनका ग्रहण हो गया, इसे देवता मुझे अपना पूजा देते अर्पण करते है, कहले उनको अर्पण कर दिया वो देख लिया इतने मात्र से उनका भोजन हो गया। न अस्नति न पीवंती एतदेव अमृतम दृष्टवा तृप्यंती, इसको देख करके ही तृप्त हो जाते हैं। और यश जो है कहा श्रवण इंद्र शिग्राह यश होता कीर्ति तेज तो दीप्ति शरीर में दिखता है दिखते है। इंद्र हो गया कर्ण के इंद्र सामर्थ्य बल हो गया देह का बल है उत्साह भी प्राण और अन्नाद्य है देह स्थिति के लिए ऐसा जो रस है सब कुछ उसको देख करके देवता लोग तृप्त हो जाते हैं। यही तृप्त होना केवल एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति तस्माद् रूपादुद्यन्ति, अभी इसको तो सेवन करते हैं किंतु कभी समय आने पर वो ग्रहण करते जब समय नहीं उदास रहते। सारे देवता सूर्य भगवान में है सब मधु है तो सूर्य का दर्शन होगा जब तब उसका सेवन करेंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देवता लोग सारे ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ है जब जिस समय जिस देवता के लिए समय आएगा उस समय उसको सेवन करेंगे बाकी अन्य समय हट जाएंगे। तो एतदेव रूपम अभिसंभिशन्ति अभिसंबल समिति ये हमारा रूप समय नहीं आया ऐसा करके उदास रहते ये रूप देखते अभी हमारा अवसर नहीं है रहते जब हमारा रूप आएगा तस्माद रूपाद उद्यन्ति जब अपना अवसर होता है तभी उठ जाते उत्साहवंत होकर के आते ग्रहण करने के लिए। सूर्य भगवान ऐसे घूमते रहते हैं जिस तरफ जो देवता है उस तरफ जब जाते हैं सूर्य भगवान देवता लोगों को तो हमारा अवसर अभी आया उत्साहवंत होकर सेवन करते हैं फिर जब चला गया चले गए वो उदास रहते देवता लोग फिर जब सूर्य भगवान उधर आते हैं तो देवता ये सब देवता विभिन्न दिशा में अलग अलग स्थान पर है सूर्य भगवान जब घूमते हैं तो जिस समय जो देवता उस देवता उस समय उसको ग्रहण करते हैं। स एतदेव अमृतम वेद वसुनाम एवेको भूत्वा अग्नि नैव मुख्येन एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपादुदेति, जो इस प्रकार इसे उपासना करता है मधु उपासना मधु विद्या है इस अमृतम इसी के जो अमृत ऋग्वेद संबंधी मधु है। वसुनाम एवेक वसु देवता के साथ एक होकर के अग्नि प्रधान होकर के जैसे देवता लोग किसी मधु का सेवन करते हैं उपासक भी देवत्व को प्राप्त करता है एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्त, देवत्व हो इसे अमृत को देख करके तृप्त हो जाता है और जब उसका अवसर आता है तो अमृत प्राप्त करता है सेवन करता है देख कर तृप्त होता है। एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति, जब भोग समाप्त हो गया तो उदास रहते है अलग रहते है जब तस्माद रूपाद उद्देती जब भोग अवसर आया तो तत्काल आकर के प्रविष्ट करके शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हमारा समय आ गया। स यावत आदित्य पुरस्ताद उदेता पश्चाद अस्तमेता वसुनाम एवत्तावत आधिपत्यम स्वराज्यम परियेता, इसी प्रकार जब जितने समय पुरस्ताद उदेता पूर्व दिशा में से सूर्य उदय होंगे पश्चिम अस्त होते वसुओं के साथ एक होकर के आधिपत्य को प्राप्त करेंगे सम्राट सम्राट होकर के उपासक तद्रूप हो जाएगा। पूर्व में उदय पश्चिम में अस्त बताया ऐसे या अन्य उदय अस्त अन्य अन्य नहीं होता है किंतु देवता अलग अलग देश में रहते हैं जो जैसे कोई दक्षिण में है ऐसे चित्र में बनाए गए गोल करके देवता सो अलग अलग है। जब इधर सूर्य इधर वाले हैं उनको सूर्य दक्षिण में रहते समय लगे उदय हुआ सूर्य से चार तरफ है तो जहां से सूर्य उदय होते तो पूर्व है किंतु अपने हिसाब से यहां देखेंगे ये नीचे दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम ऐसे रहता है। ऐसे भी देखने से जो एक देवता यहां है इधर सूर्य है तो उनके लिए रात है इधर आएंगे तो दिन होगा और जब सूर्य भगवान इधर आ जाता है उनको अभी प्रातःकाल दिखेगा सूर्य उदय हुआ उस समय सूर्य दक्षिण दिशा में उनके लिए दक्षिण में उदय होते हैं। हम कहेंगे उनको सूर्य उदय दिखता है तो हम विचार करेंगे उनको सूर्य उदय होता है तो सूर्य उस समय कहाँ है दक्षिण तो दक्षिण में उदय हुए उत्तर में अस्त होंगे। इसी प्रकार कोई सूर्य उधर कोने में चले गए तो यहाँ उदय होंगे, इधर चलेंगे तो उत्तर में उदय होंगे, यहाँ जो देखेंगे यहाँ उदय होंगे तो देखेंगे उत्तर में उदय हुआ। इसी प्रकार दे करके पूर्व में उदय पश्चिम में अस्त ऐसा प्रयोग करेंगे। हम यहाँ मनुष्य के हिसाब से हम कहते पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, नहीं तो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर क्या है, वो दिशा कुछ अलग है ही नहीं, सारा आकाश में बहुत दूर तक चल जाएंगे तो किसको पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, ऊपर किसको कहें नीचे किसको कहेंगे, ऊपर नीचे दक्षिण उत्तर कुछ नहीं, पृथ्वी में है सूर्य उदय को लेकर के जहां जिधर उदय होता है पूर्व कहते हैं, तो हमारी दृष्टि में पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर कहते हैं। देवतला विभिन्न स्थान में रहेंगे तो देवता हमारे कहेंगे, जब सूर्य भगवान उधर जो रहेंगे उनको उभर गया तो उनको दिखेगा ऊपर, ये पर्वत के स्थान पर कहीं ऊपर जब जाते हैं गंगोत्री आदि में बहुत पहाड़ है, पहाड़ों के कारण सूर्य उदय हो गए तो भी सूर्य भगवान का दर्शन नहीं होगा, 11 बजे कहीं कहीं 11 बजे आने पर सूर्य का दर्शन होता है, थोड़ी देर बाद उधर भी पहाड़ है, थोड़ी देर सूर्य आया फिर बाद में अस्त हुए लग गया, अस्त नहीं हुए, सूर्य का दर्शन कम समय होता है, बहुत पहाड़ में कहीं कहीं इसे पहाड़ इधर भी पहाड़ बड़े बड़े इधर भी पहाड़ है, नीचे कुछ जगह है लोग गांव में रहते हैं, पहाड़ में देखो गांव घर कैसे है, वहां पहाड़ में देखने से आश्चर्य होता है, यहां भी कोई ऊपर घर है इधर भी घर है, वहां पता नहीं चलता वहां कैसे जाते हैं कहां जाते हैं, उनको पता है रास्ता, जैसे अपने घूमने के लिए आप लोग चलते हैं ना जोर से चलते हैं सामान्य प्लेन रास्ता में, उनके लिए पहाड़ में भी चढ़ाई उतराई उनसे बराबर, उनको तो देखने से डर लग गया, वो सब सामान कुछ लेकर के जाते हैं कहां जाते कहां, तो दोनों तरफ पहाड़ होगा बीच में है तो क्या होगा, सूर्य सुबह होने के बाद दर्शन उदय नहीं है, वो दो पर में थोड़ी देर आया फिर चले गए, तो ये कहेंगे ऊर्ध्वम उदय था, अभी कहेंगे सूर्य भगवान ऊपर में अस्त होंगे, उदय होंगे ऊपर, ऊपर उदय हो क्या, ऊपर आने पर दिखते हैं इसे ऊपर उदय हुए, पश्चिम पूर्व उदय हुए दक्षिण उत्तर उदय है ये तो बताया, ऊर्ध्वम उदय था ऊपर ही उदय होंगे नीचे अस्त होंगे, ऐसे सब प्रयोग करेंगे अलग अलग देवता, कोई देवता अधिक संभव करते कोई कम संभव करते कितने उदय अस्त इस सब अलग प्रकार कहेंगे, हमारे दृश्य पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर अलग अलग दिशा में है, जिनको अधिक समय दिखेगा तो अधिक समय कहीं उदय अस्त में व्यवधान कहीं कम समय कहीं पश्चिम में उदय कहीं पूर्व में उदय ये सब कहेंगे। अथ यद द्वितीयम अमृतम तद रुद्रा उपजीवंती इंद्रेण मुखेन न वे देवा स्नन्ति न पिबंती एत देवा अमृतम दृष्टा तृप्यंती, द्वितीय अमृत हो गया मध्यम दिन सवन रुद्र देवता थे, द्वितीय अमृत यजुर रूप पुष्प से यजुर्वेद वित्त कर्म से आया था, उसको रुद्र देवता उसमें आश्रित होते इंद्र उसमें मुख्य प्रधान, और देवता लोग जो आश्रित होते अमृत का सेवन करते हैं बस तो खाते नहीं, न देवा अस्नती न पीबंती खाते नहीं पीते नहीं किन्तु उसको देख कर ही तृप्त होते है, त एतदेव रूपम अभिसंबिशंति एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति, देवता लोग को जब उनका भोग अवसर होता है उत्साह वाले होते उद्यन्ति उत्साहित होकर भोग करते हैं, एतदेव रूपम अभिसंबिशंति जब उनका भोग समाप्त हो गया उदास हटकर रहते हैं, स एतदेवमृतम वेद रुद्राणाम एवेको भूत्वे इंद्रेण मुखेन एतदेवमृतम दृष्ट्वा तृप्यति, स एतदेव रूपम अभिसंबिशंति एतस्माद् रूपाद् उदेति, जैसे अमृत की उपासना करता है यजुर्वेद विहित कर्म साध्य फल अमृत है सूर्य भगवान में वो रुद्र के साथ एक हो जाता है, रुद्राणाम एक भूत्वा जो रुद्र है माध्यम दिन श्रवण अभिमान देवता उपासना करके रुद्र रूप को प्राप्त कर लेता है, इसी जो देवता लोग को इसी अमृत का सेवन करते हैं वो भी अमृत सेवन करता है, इंद्रेण एवं मुख्य न इंद्र उनमें प्रधान होता है, इसी अमृत को देख करके तृप्त होता है, जब समय आता है तो भोग करता है जब नहीं तो सब देवता हट करके रहते ये रूपम अभिसंबिशंति भोग अवसर नहीं तो इसे अलग रहते हैं, जब भोग समय आए तो फिर सेवन करते हैं, स यावद आदित्य पुरस्ताद उतेता पश्चाद अस्तमेता द्विस्ताव दक्षिण उदेता उत्तर तो अस्तमेता, रुद्राणाम तावत आधिपत्यम स्वराज्यम परियता, जितने समय आदित्य पूर्व में उदय होकर के पश्चिम अस्त को जाएंगे दो गुणा दक्षिण में उदय होकर के उत्तर में जाएंगे अस्त होंगे उसका दो गुणा, जो देवता है जितने समय उनको सूर्य दिखेगा उसके हिसाब से जो रहेंगे और जब उदय अस्त होने पर भी वहां के लोग यदि नहीं रहेंगे, लोग देखेंगे तो उदय अस्त में व्यवहार होगा, कोई नहीं तो उनके लिए उदय अस्त में व्यवहार नहीं होगा। यहां जो रहते हैं ये दोगुना समय रहते हैं। जो पहले बताया था जो लोग प्रातः सवन में भोग करने वाले थे वसु देवता, वो जितने दिन भोग करते हैं उसे दोगुना समय भोजन करते हैं जो मध्यान्ह काल है रुद्र देवता। इसलिए उनके हिसाब से सूर्य उदय समय उनके दोगुना समय होता है। ये जितने दिन तक सूर्य उदय समय होता है उनके हिसाब से वो दोगुना हो जाएगा, तब तक रुद्रों का आधिपत्य होता है, साम्राज्य होता है। अथ य तृतीयम अमृतम तद आदित्या उपजीवंती वरुणेन मुखेन नवे देवासनती न पिबंती एत देवा अमृतम दृष्टा तृप्यंती। तृतीय जो अमृत है सामवेद विहित कर्म से निकला, साम मंत्र के द्वारा पुष्प मधुकर लाए, आदित्य देवता उसको आश्रित होते हैं। वरुणेन मुखेन, वरुण होता है प्रधान उसमें, न वे देवा आसनती न पिबंती एत देवा अमृतम दृष्टा तृप्यंती, सब में सब बराबर है, देवता लोग खाते नहीं पीते नहीं देख करके तृप्त हो जाते हैं। त एत देव रूपम अभिशमिष्यन्ति तस्माद् रूपाद् उद्यन्ति, वो आदित्य देवता रहने पर भी उनका भोग अवसर जब होता है तब उत्साहवंत होकर के सेवन करते हैं, जब समय समाप्त होता है तो हटकर रहते से हट जाते हैं। स एत देवामृतम वेद आदित्या नाम एको भूता वरुणेन मुखेन एत देवामृतम दृष्टा तृप्यति, स एत देव रूपम अभिशमिष्यन्ति तस्माद् रूपाद् उद्यन्ति। जो इस प्रकार इस अमृत की उपासना करता है सामवेद विहित कर्म उपासना साध्य फल, तो इसी प्रकार क्या करता है तद्रूप हो जाता है, तो आदित्य के साथ एक होकर आदित्य नाम है वह एक भूता, आदित्य में एक हो जाता है, वरुण प्रधान होता है उसी अमृत को देख करके तृप्त होता है। जैसे देवता लोग एत देव रूपम अभिशमिष्यति, जब समय नहीं आए तो उदास रहता है, जब समय आता है भोग करता है। स यावत आदित्य दक्षिणत्व उदयता उत्तरत्व अस्तमेता दिश तावत पश्चात उदयता पुरुषाद अस्तमेता, जितने समय दक्षिण से उदय होकर के उत्तर में अस्त होंगे उसके दोगुना समय पश्चिम उदय होकर के पूर्व में अस्त होंगे, वहां रहने वाले उसमें दोगुना समय वास करेंगे। जिस लोक में अधिक समय वास करेंगे अधिक समय उदय अस्तमय को देखेंगे, जहां आपके स्थान में रहे कम समय रहे तो उदय समय आप जितने देखोगे, जो अधिक समय रहेगा उदय समय अधिक देखेगा। उदय समय तो होता है, कोई आकर कहेगा मैं वहां रहा इतने उदय समय देखा, जो जहां जितने समय रहेगा उसके अनुसार उदय समय देखेगा। इतने दिन रहा कहते ना, इतने साल में रहा, इतने दिन रहा, कोई एक स्थान में जाकर 5 वर्ष रहा, कोई 10 वर्ष रहा, कोई 20 साल रहा, तो 5 वर्ष देख करके आएगा तो 5 वर्ष उदय अस्त में देख करके आया। जो वहां 10 साल रहा था 10 साल उदय मस्त देखकर आया, जब 20 साल रह करके आया वो क्या बोलेगा 20 साल उदय मस्त देखा। ये कोई कोई बनाते हैं कितने चंद्र दर्शन किया, सत्यपूर्ति करते और भी अधिक कुछ कहते हैं, हिसाब करेंगे एक मास में एक बार चंद्र दर्शन होता है, 12 मास में 12 चंद्र दर्शन हुआ, और फिर कितने वर्ष 80 वर्ष 80 वर्ष हो जाएगा, कितने चंद्र हो जाएंगे 960 हुआ, और उससे 80 से थोड़ा कम में भी कुछ कुछ बीच में पुरुषोत्तम मास मल मास आता है, मल मास में पूर्णिमा आती है चंद्र दर्शन होता है, मलमा से पुण्य आती क्या आश्चर्य लगता है, पुण्यमा तो आती है, तो उसके चंद्र दर्शन हिसाब करेंगे, ऐसा हिसाब करके 1000 हो जाएगा, 1000 चंद्र दर्शन किया कितने साल में हिसाब करके उसको भी मनाते हैं। तो ये भी जो काल में ज्येष्ठ कनिष्ठ का हिसाब होता है, ये कौन ज्येष्ठ और कनिष्ठ, ये सूर्य के साथ ये शरीर का संबंध बहुतर रवि क्रिया संबंधित ज्येष्ठत्वम परत्वम, रवि के क्रिया उदय समय का संबंध जिस पिंड के साथ अधिक है वो ज्येष्ठ है। रवि जो जन्म होगा अभी रवि क्रिया का संबंध, अभी 5 दिन का 10 दिन का 10 साल का 20 साल का होगा, अधिक साल से जो उसके रवि का संबंध अधिक है। अब कभी कोई जन्म हुआ 10 साल के बाद मर गया, उसका छोटा भाई जन्म हुआ वो 50 साल पे जीवित रहा, तो ज्येष्ठ कनिष्ठ कैसे विचार होगा? तो विचार करेंगे वो मर जाने पर भी पहले जो रवि क्रिया उसके हिसाब करना। अभी तक सूर्य क्रिया का संबंध अधिक है तो ज्येष्ठ है, ये शास्त्र में आता है। ज्येष्ठ कनिष्ठ विचार करने के लिए सूर्य की जो क्रिया है गमनागमन उसका अधिक संबंध जिसमें हो वो बड़ा हुआ, और छोटा में कम संबंध होगा। बहुत सूर्य दर्शन उसने देखा, तो सूर्य दर्शन में बहुत देखा, चंद्र उदय किसने देखा, आपने कितने पुण्य चंद्र दर्शन किया, उन्होंने इतने पुण्य चंद्र दर्शन किया, के एक व्यक्ति ने 1000 पुण्य चंद्र दर्शन किया, ये व्यक्ति में 500 दर्शन किया, कम देखा, उसके हिसाब से उसका आयु कम ज्यादा कहते हैं। इसी प्रकार देवता लोग जहां जैसे वास करते हैं, इतने दिन उदय अष्टम में देख आते हैं तो क्या कहेंगे, इतने समय यहां उदय अष्टम हुआ, जो 2 साल रहकर आया 2 साल उदय में अस्त देखा, उदय अष्टम कितने साल देखा, 2 साल देखा, तो इतने दिन यहां उदय में अस्त देख करके आया, क्या इतने दिन उदय अष्टम हुआ, आगे हुआ या नहीं हुआ उसको पता नहीं। इसी प्रकार यहां कहते जो पहले था उसके 2 गुना अभी 4 गुना हो गया, जितने दिन पूर्व में उदय पश्चिम में अस्त 2 गुना हो गया, दक्षिण में उदय उत्तर में अस्त, उसके फिर 2 गुण हो गया पश्चिम उदय और पूर्व में अस्त, यावत आदि तो दक्षिण उदय उत्तर में अस्त होंगे, 2 गुना हो गया पश्चिम उदय होकर पूर्व में अस्त होंगे, आदित्यनाय तावत इतने आधिपत्य स्वराज्य को प्राप्त होता है। अथ य चतुर्थम अमृतम तन मरुत उपजीवंती सोमेन मुखेन नवे देवास्यन्ति न पिबंती एत देवामृतम दृष्टा तृप्यंती। जो चतुर्थ हुआ इतिहास पुराण से हुआ अथर्वांगिर से हुआ, मरु देवता आश्रित तो होते सोम उसमें प्रधान है, देवता लोग खाते पीते नहीं देखकर तृप्त तो होते हैं और अपने उस समय आने पर भोग करते बाकी सब उदास रहते हैं। तो एत देव रूपम अभिशंभिशंती तस्माद रूपाद उद्यंती, ये रूप के निमित्त उद्यम करते उत्साहित तो हो जाते जब अपना भोग समय आता है, जो उपासक भी उनके साथ एक हो जाता है मरु देवता के साथ एक हो जाता है। एत देवामृतम वेद मरुता नाम मरुतामेव एक भूत्वा सोमेन इव मुखेन एत देवामृतम दृष्टा तृप्यति स एत देव रूपम अभिशंशति तस्माद रूपाद उदयति। जो उपासना करता है मरुत के साथ एक होता है सोम प्रधान होकर के इस अमृत को देकर तृप्त होता है, जब समय आता है तो उसमें आश्रित भोग करता है बाकी से हट कर रहता है। स यावत आदित्य पश्चात उदयता पुरस्ताद अस्तमेता पश्चिम उदय पूर्व में अस्त होते हैं, दिश तावत उत्तर तो उदयता दक्षिण अस्तमेता उसके 2 गुणा समय उत्तर में उदय होकर दक्षिण में अस्त होंगे। मरुतामेव तावत आधिपत्य मरु देवता का इतना आधिपत्य, जिस देश में अधिक समय रहेंगे अधिक उदय में अस्तर देखते हैं, इसे कहते हैं अधिक उदय में अस्तर होता है और रहता हमेशा रहकर जो जितने देखा इतने कहेगा। इसके अभिप्राय से इतने आदित्य के उदय स्तम होता है स्वराज्य होता है। अथ यत पंचम अमृतम तत् साध्या उपजीवंती ब्रह्मणा मुखेन न भी देवासनती न पीबंती एत देवामृतम दृष्टा तृप्यंती स एत देव रूपा विषमिशंति एतस्माद रूपाद उद्यंती स एत देवामृतम वेद साध्या नामे वेको भूता ब्रह्मण एव मुखेन एत देवामृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एत देव रूपम अभिशंशंति एतस्माद रूपाद उदयति स यावत आदित्य उत्तर तो उदयता दक्षिण तो अस्तमेता दिश तावत ऊर्ध्व उदयता अर्वाग अस्तमेता साध्या नामे वेव तावत आधिपत्यम साराज्यम परियेता। पंचम अमृत है साध्य देवता, उसका इतिहास पुराण से होता है साध्य देवता है आश्रित होते ब्रह्मणा मुखेन, ब्रह्मा उसमें मुख्य प्रधान हो गया ब्रह्म रूप मुख्य देव ब्रह्मा रूप है तो प्रधान उसमें होते हैं। तो ये हाँ उसमें थोड़ा सा वो विभिन्न प्रकार विचार आया है। तो ये सब जिस प्रकार उनके दृष्टि से उदय अस्तम चीजें बताए लेना, नहीं कि वस्तु तो उदय अस्तमय बड़ा अलग अलग होता है इसे नहीं है, उनके दृष्टिगोचर होने पर ही उदय अस्तमय व्यवहार होता है। और जो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ये उनके दृष्टि से तो उदय पूर्व में ही है, किंतु हमारी दृष्टि से हम कहते पूर्व उदय दक्षिण उत्तर ऐसे कहते हैं। जैसे अपने दृष्टि से सिंहल दक्षिण में वहां सूर्य उदय हुआ तो हम कहेंगे वहां दक्षिण में उदय हुआ, उत्तर दिशा में कोई देश है उस समय सूर्य उदय है तो कहेंगे उत्तर में उदय हुआ, उत्तर में तो नहीं हम कहेंगे अभी उत्तर दिशा में, उत्तरायण दक्षिणायन कहते, उत्तर दिशा चले गए तो उत्तरायण दक्षिण दक्षिणायन से भी कहते हैं पृथ्वी का पीछा करके। और जो ऐसे रूप समय आता है भोग करते बाकी समय अब रहते उदास, जो उपासना करता है भी वो देव साध्य देवता को प्राप्त करता है, वो साध्य देवता ही हो जाता है तो होकर के इसे यही सेवन करता है तो उस अमृत को देकर तृप्त होता है। और जब समय नहीं उदास रहता है आदित्य जितने उत्तर में उदय होकर के दक्षिण में अस्त जाएंगे दोगुना ऊपर में उदय होंगे नीचे अस्त जाएंगे। ऊपर उदय होते निश्चय अस्त होते पहाड़ में दिखता है, ऊपर में सूर्य यहाँ सिद्ध है पूर्व दिशा में, उदय होते समय कितने बजे आएगा 11 बजे दिखा सूर्य उदय, और इधर नीचे बहुत ही पहाड़ ऐसे बहुत ही कहीं इसी गांव या बीच में ऊपर बहुत पहाड़ है, सूर्य उदय दिखा बहुत विलम्ब में, और अस्त होते समय नीचे सूर्य दिखते हैं, ऊपर ऐसे इधर पहाड़ है तो दिखेगा नहीं, जहां दोनों तरफ पहाड़े मध्यान्ह में थोड़े सूर्य दिखेगा आगे अस्त दिखेगा नहीं वही अस्त हो गया, जहां एक तरफ पहाड़ बहुत ही कभी कभी ऊपर पहाड़ में चढ़ जाएंगे तो नीचे बहुत दूर तक दिखता है, पहाड़ में से नीचे से दिखता है बड़े बड़े मकान नीचे छोटे छोटे कीड़े जैसे बड़े बड़े पेड़ ऐसे ऐसे दिखता है छोटा छोटा, ऊपर चले जाएंगे तो ऐसे दिखता है नीचे, कभी पहाड़ में चढ़ो तो देखो ऊपर जाने पर कभी कभी नीचे दिखता है, नीचे भी आकाश जैसे लगता है, और आकाश यहां कैलाश आश्रम से जाते हैं नीलकंठ दर्शन के लिए पहाड़ में चढ़ते हैं, ऊपर पहाड़ जाने के बाद वो ऋषिकेश दिखता है, वो बहुत दूर से नीचे दिखता है, तो नीचे देखेगा तो सूर्यास्त कहाँ होंगे नीचे अस्त होंगे, उदय हुए कहाँ ऊपर पहाड़ के ऊपर से उदय हुआ, उदय ऊपर से नीचे अस्त हुआ, साध्य देवता में इतने आधिपत्य इतने समय रहते हैं। अथ तत ऊर्ध उदेत्य नैव उदेता नास्तमेत एकल एव मध्य स्थाता तदेश श्लोक, उसके बाद ऊपर उदय होंगे नैव उदेता नास्तमेता, उदय होने के बाद आगे उदय अस्तम नहीं हमेशा ही से रहेगा, एकल एव मध्य स्थाता अकेले ही मध्य रहेंगे, वहां उदय अस्तम हमेशा उनको जो देखते ऊपर चले गए आदित्य का दर्शन करते आगे उदय अस्तम नहीं एक ही रहेंगे, तदेश श्लोक उसको कहने के लिए आगे श्लोक है। कोई पूछा तो वहां तुमने गया देखा सूर्य उदय समय देखा, कहते हैं वहां उदय समय होता ही नहीं, ऊपर चल जाने पर सूर्य का हमेशा दर्शन करते तो कब उदय समय कहा होगा, यहां तो पृथ्वी के अनुसार कभी दिखते कभी नहीं दिखते उदय समय, ऊपर चल जाने पर हमेशा सूर्य को दर्शन करते तो ना तो उदय ना अस्त, नवी तत्र निमृच नोदी आय कदाचन देवास्ते नाहं सत्येन मां विदाधीशी ब्रह्मणेति, कोई आकर कहा ब्रह्मलोक से आया आने के बाद पूछते हैं जो उत्तरायण दक्षिणा होता है उत्तरायण छह महीना देवताओं का दिन होता है, देवताओं हमेशा ही सूर्य का देखेंगे, यहां विज्ञान में भी बताते हैं जो उत्तर मेरु में है दक्षिण मेरु में है कोई अंटार्कटिका ना क्या देश है उत्तर मेरु में है, उनको मालूम है कितने समय दिन होता है उनका सूर्योदय देखते हैं, छह महीना उनको सूर्य दिखेगा उत्तरायण के समय, दक्षिणायन हो जाएंगे तो उनको नहीं छह महीना रात है, इसी प्रकार देवताओं का छह महीना होता है दिन, हमारा छह महीना हुआ उनका दिन, हमारा छह महीना उनका रात, हमारा जो उत्तरायण है देवताओं का दिन है जो दक्षिणायन है देवताओं का रात है, ये असंभव नहीं, ये वैज्ञानिक लोग बताते हैं विज्ञानी बताते हैं जब उत्तर मेरु में जो लोग रहते हैं उनको छह महीना दिन छह महीना रात होता है, इसी प्रकार देवताओं दिन रात होता है, अब ब्रह्म लोग जो चलेगे और ऊपर चलेगे उनके लिए दिन रात नहीं है, वहां आकर कहते पूछते कोई पूछा ब्रह्म लोग से आया क्या पूछते है क्या वहां उदय अस्त में होता है क्या, बोलते नवी तत्र निमृच न उदयाय का राजा, बोले नहीं वहां नहीं, ना तो कभी अस्त हुआ ना कभी उदय हुआ, ये सब लोग का आश्चर्य होते ये कैसे होता है उदय समय नहीं होता है, उदय समय के बिना कैसे होगा, उदय नहीं होते, अस्तमय होते, दिन रात कैसे होगा, इतने साल तुम रहे कैसे होगा। तो देवताओं से शपथ कर दे, हे देवा तेना हम सत्यना मां विराधी। देवता से कहते साक्षी होकर सुनो, मैं जो बोलता सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ ना, सत्य से मेरा विरोध नहीं, ब्रह्मणा ब्रह्म स्वरूप से मैं विरोध नहीं कर, सत्य रूप ब्रह्म है उसके साथ मेरा कोई विरोध नहीं। यदि विरोध हो ब्रह्म को मैं प्राप्त जैसे हो तो मैं ब्रह्म को प्राप्त नहीं करूंगा। अर्थात उपासक कहता मैं ब्रह्म लोक जाता हूँ प्राप्त करता हूँ, ऐसा विरोध होगा तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो, अर्थात मैं सत्य बोल रहा हूँ, उदयस्थ में नहीं होता है। ये शपथ देकर के कहता है अन्य को विश्वास देने के, अन्य लोग को कहते ये कैसे हो सकता है, इतने दिन रह कर आया उदयस्थ में नहीं होता है, ये कैसे होगा। तो कहते हैं देवता में साक्षी करे मैं कहता हूँ उदयस्थ में नहीं होता है। न हवास न उदेती न निमृचती सकृत दिवा हिवास में भवती ये हिताम एवं ब्रह्म उपनिषद वेद। जो इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म उपनिषद इसी मधु विद्या की उपासना करके ऐसे साक्षात्कार तन में हो जाता है ब्रह्मलोक जाएगा, ब्रह्मलोक जाएगा तो उसके लिए ना तो सूर्य का उदय होगा ना तो अस्त होगा। अस्मे न उदयते न निमृचति सकृत दिवा है समय भवती, उसके लिए तो दिन ही हम दिन ही होगा हमेशा प्रकाश ही। इसे जो उपासक अर्थात ब्रह्म उपनिषद गुह्य जो रहस्य को जो जानता है उपासना करता है इसी प्रकार। तदेत ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर मनवे मनु प्रजाभ्यस्तेत उद्दालकारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच। तदेत ये जो मधु विद्या है मधु ज्ञान ब्रह्मा जी ने हिरण्यगर्भ ने पहले कहा प्रजापते अर्थात विराट को कहा, हिरण्यगर्भ समस्त सूक्ष्म सर्व अभिमानी उन्होंने पहले कहा विराट को कहा प्रजापति को कहा विराट को। अब प्रजापति ने कहा मनु को कहा मनु, मनु भी सारे प्रजाओं को कहा सारे प्रजा इच्छा को आदि प्रजा को मनु ने उपदेश किया। तदेत उद्दालकाय आरुणय ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रवाच। ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र उद्दालक आरुणी अनेक सृष्टि में किस कल्प में ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र हुआ था उद्दालक आरुणी ज्येष्ठ पुत्र को पिता ब्रह्मा ने कहा इदम बावत ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रुयात प्रणयाय अंतेवासिने। यह जो मधु ज्ञान है कोई ब्रह्म का रहस्य का उपदेश करे किसको, ज्येष्ठाय पुत्राय पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को ही उपदेश करे प्रब्रुयात, ये ब्रह्म रहस्य विज्ञान मधु विज्ञान, प्रणयाय व अंतेवासिने अथवा प्रिय शिष्य को उपदेश करे, ज्येष्ठ पुत्र अथवा प्रिय शिष्य उसको ही उपदेश करे अन्य को नहीं। न अन्यस्मी कस्मी चनम यद्यप्यस्मा इमाम अद्भि परिगृहितां धनस्य पूर्णां दद्याद् एतदेव ततो भूय इति एतदेव ततो भूय इति। यदि ऐसे कहने वाले आचार्य को कोई धन दे तो कहेगा नहीं, कहते क्या धन देगा, यदि अप्येतस्मे इमाम अद्भि परिगृहितां, ये जो पृथ्वी है समुद्र से घिरा हुआ है अधि परिवेष्टित, ये सारे पृथ्वी धन से पूर्णाम चारों तरफ समुद्र समुद्र के द्वारा घिरा हुआ पृथ्वी यदि धन से पूर्ण दे तो भी एतदेव ततो भूय, ये मधु ज्ञान ही उससे बढ़कर के अधिक है। यह जो मधु ज्ञान रहस्य वेद उपनिषद वेद बताया रहस्य ज्ञान मधु विद्या उससे बढ़ करके, इसलिए इसके बराबर कोई धन है ही नहीं, कोई दे नहीं सकता है। अर्थात किसी प्रकार ज्येष्ठ पुत्र अथवा प्रिय शिष्य को उपदेश करे अन्य किसको उपदेश नहीं करे, ये श्रुति कहती है एतदेवता तो भूय एतदेवता तो भूय इति दो बार आदर के लिए कहते हैं। अर्थात सबसे उत्कृष्ट फल है मधु विद्या, इसका दान के लिए बराबर धन संभव नहीं, कोई दे नहीं सकता है। अभी ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के बाद ये रहस्य विद्या उपासना है मधु ज्ञान मधु विद्या, यह मधु विद्या इसे उपासना करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। और यदि निष्काम होकर करता है मुमुक्षु को हमेशा ही ये वैदिक कर्म उपासना करते समय श्रवण करते समय सुनते समय हमेशा अपने लक्ष्य के ओर ध्यान रखना, मुझे क्या चाहिए, ये वैदिक उपासना करे स्मार्तोपासना करे, कहीं जाते हैं कुछ सुनते ससा सुनते तो भी अपने लक्ष्य नहीं भूले। कोई चमत्कार कुछ बता दिया, चमत्कार ऐसे हम कर देंगे, इसे दिखा देंगे, सुनने वाले अपने लक्ष्य छोड़ करके सोते इसे चमत्कार हम भी थोड़ा देख ले। कोई चमत्कार दिखाने वाला उसके पीछे भागने लगे, कहते इतने दिन तक साधना करे कुछ नहीं हुआ, ये कुछ चमत्कार दिखा तो उनके पीछे गए। वो करके कोई कुछ हाथ से कुछ निकाल दिया, मुख से कोई निकाल दिया, कोई मुख से शिवलिंग निकाल देता है, कोई शालग्राम निकाल देते हैं, कोई माजी जादू कर दिखा दे तो कुछ दिखाते है, कोई थोड़ा सीख करके ऐसे भस्म निकालता है, कुछ कुछ करते, कोई कोई किस किस ने किया होगा, ऐसा क्या क्या पता नहीं, अन्य लोग भी अनुकरण करके। अब इस प्रकार सिद्ध भी बहुत ही है, बहुत आने बहुत सिद्ध है, कहेंगे जो मार्ग दे देंगे, ऐसे कुछ करके करते दिखाते है, कुछ स्मशाना साधना करते, तंत्र साधना, मन की बात बताने, कोई आकर पहुंचा मन में क्या सोता है, उसके घर में क्या सुख दुख का कारण हानि लाभ इसको बता देंगे। सबका कुछ ना कुछ परेशानी कुछ होगा, सबका किसके साथ विरोध भी होगा, कोई प्रेमी होगा कोई विरोध होगा, जाकर पहुंचा तो कह देगा तुम्हारा सब तो ठीक है किन्तु वो तुम्हारे विरोध में है, जो विरोध है उसके नाम बताएंगे और तुम उसके कारण परेशानी है। आकर पहुंचते ही जब उसके बारे में बता दिया तुम्हारे में क्या दुख है और तुम्हारे किसके साथ झगड़ा है, किसी का किसी के साथ थोड़ा विरोध होगा, और कभी कभी किसके बीमार है तो कहेंगे तुम्हारी ये बीमारी नहीं है, ये किसने कराया, डॉक्टर के जाने के पास जाते तो रोग बताएंगे, वो तांत्रिक लोग बताएंगे ये बीमार नहीं है, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, क्यों इसको तो किसने कराया, किसने कराया तो किसी का किसी के साथ थोड़ा तो विरोध कहीं होगा, बताया देखो उसके ऐसे लक्षण बताएंगे आपको लग जाएगा, आप उनके घर पर गए थे भोजन करेंगे, उन्हें आग्रह किया आपने मना किया, फिर बहुत आग्रह करने पर आपने खाया, वो खिलाते समय आपको इसे दिया था एक लड्डू दिया था, वो उसमें मना करते करते भी क्या आपने खाया, उसमें रख दिया था कुछ, उसी के कारण तुम्हारा ऐसे बीमार। और ऐसे जो लक्षण बताएगा और व्यक्ति कैसा है और कोई महिला या कितने उम्र की किस प्रकार खिलाया क्या क्या खिलाया ऐसे कुछ बता देने के बाद आपका स्मरण हो जाए, हाँ उनके घर गए थे लड्डू तो खाए थे, फिर उसने कुछ कर दिया, कही आपके बंधु बांधव में कोई, फिर बाद में पता चले कि अरे हमारे बंधु बांध में किसका भाई किसके भाई के भाभी के भाई किसके कुछ ना कुछ थोड़ा संबंधी होगा उसका नाम बताएंगे, फिर सोचे हाँ वो तो थोड़ा हमारे पर नाराज है, उसने क्या नाराज है कुछ ना कभी किसी कारण होगा, थोड़े बहुत कुछ ना कुछ होता है, तो उसके नाम बता दिया तो आपको लगे अच्छा उसने इसे किया, दिमाग में आ गया। वो बाद में तो कोई भूत प्रेत नहीं हो, अपने आप भूत प्रेत को बैठा करके परेशान रहेगा, इतने परेशानी हो गया रोग ठीक हो जाए तो उसका भूत प्रेत मन में बैठ गया, वो नहीं जाएगा। डॉक्टर के पास कोई पहुंचा बताया तुम्हारा क्या परेशानी, बुखार है, कैसे पता चला, और वैद्य कहते किसी वैद्य को आयुर्वेदिक वैद्य को दिखाया कहा आपके बुखार है, बुखार है तो उसका लगा बुखार है, फिर डॉक्टर बड़े डॉक्टर के पास गए और किया, वो देखे बुखार नहीं है, फिर बुखार नहीं बुखार बहुत बुखार वैद्य ने बताया, आपको परेशानी क्या क्या लगता है, डॉक्टर बताते हैं आपको कैसे पता चला बुखार है, क्या आप में परेशानी क्या होता है बताओ हम औषध देंगे, बोलता बुखार है, वैद्य ने बताया बुखार है, जितने बार पूछा वैद्य ने कहा बुखार है, बोले हाँ बुखार तो जरूर है किंतु आपको क्या तकलीफ बताओ, बोले बुखार ये तकलीफ तो कुछ नहीं है, तो क्या कहेगा, वैद्य ने बताया बुखार है बुखार है, फिर कहे थे वो कहा इंजेक्शन देने से होगा, और कहीं के लोग इसे कहते एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा फोटो जो निकाल दिया रोग ठीक हो जाएगा, लोग उसे समझते हैं एक्स्ट्रा फोटो निकालो ठीक हो जाएगा, बोले हम फोटो निकाल देंगे और इंजेक्शन में देंगे, फिर समय बताया, फिर कहे इंजेक्शन इंजेक्शन क्या कुछ नहीं है बुखार, इसी प्रकार किसके दिमाग में है आ जाते भूत प्रेत करके बहुत लोग को परेशानी है, ऐसे करते हैं तो तंत्र में तो दिखाने वाले ऐसे करके ठग लेते हैं, और कुछ लोग उसी के पीछे तंत्र दिखाने वाले चमत्कार दिखाने वाले उधर भाग जाते हैं, तो ये हमेशा मुमुक्षु को सावधान रहना चाहिए, हमारा लक्ष्य उद्देश्य क्या है, ऐसे कहीं लोभ फल कुछ सुन करके कहीं चमत्कार कहीं कुछ सुन करके उधर भागे नहीं, बहुत ऐसे इधर होकर के भटक जाते हैं, तो यहां भी इतने उपासना है बहुत उत्कृष्ट फल है, किन्तु आपको क्या चाहिए, वेदांत में जो चाहते परब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए मुख्य के लिए, तो ब्रह्म लोग तक फल भी नहीं चाहिए ये निश्चय करके चले तब परमात्मा साक्षात्कार होगा, दृढ़ निश्चय उसको भूले नहीं। अभी भी यहाँ और कुछ अतिशय फल के लिए अभी कहते हैं गायत्री उपासना, गायत्री के द्वारा ब्रह्म उपासना भी कहते हैं। ये भी उत्कृष्ट है। अनेक छंद है गायत्री छंद, वेद में जितने मंत्र है सन्यासी को जो मंत्र देते हैं उसके बाद गायत्री मंत्र, किंतु गायत्री से करने वाले तो करते रहते हैं, तो गायत्री मंत्र के नियम है यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद जिनका यज्ञोपवीत है संस्कार होता है वही गायत्री मंत्र जपने के लिए कहा गया। और मंत्र उत्कृष्ट है तो अधिकार नहीं यदि करेगा तो अनिष्ट होता है। अरे बहुत लोग करते रहते हैं उसमें इसे श्रद्धा का फल अलग, किंतु शास्त्र उल्लंघन करने से उसे पाप होता है। और कुछ लोग ऐसे दे देते हैं जिस किसी को जने पहना देते हैं, जो जने नहीं रखकर भी करते हैं, ये सब विभिन्न प्रकार चलता है। शास्त्र को जानने वाले इसको बताते हैं गायत्री जपने का किसका अधिकार। यहां मंत्र जपने के लिए नहीं कहते, यहां उपासना चिंतन करने के लिए, ऐसे चिंतन करने में कोई आपत्ति नहीं है। गायत्री वाइदम सर्वम भूतम यदिदम किंच वाग वे गायत्री वाग वाइदम सर्वम भूतम गायत्री चत्रायते च गायत्री इदम सर्वम, ये सारे कुछ गायत्री है, सारे सब गायत्री है, सारे सब ब्रह्म कहेंगे, सारे सब जितने भूत प्राणी जो स्थावर जंगम चराचर जड़ जड़ जीव चेतन जड़ जो कुछ है सब कुछ गायत्री है। सर्वम भूतम यदिदम किंच जो कुछ है सारे कुछ गायत्री कैसे हो गया। गायत्री कहते हैं वाग्वे गायत्री, गायत्री के छंद है वो, क्या शब्द रूप है नहीं, वाग रूप है नहीं, वाग गायत्री के छंद है, तो मंत्र श्लोक बोलेंगे वो शब्द रूप है वाग्वे गायत्री, वाग्वे गायत्री वाग वा इदम सर्वम भूतम, इदम सर्वम भूतम गायत्री च त्रायती च, सारे भूतों को गान करने वाले, सारे भूतों का नाम लेने के लिए वाग ही नाम लेने वाले, कौन नाम लेगा, उच्चारण कौन करेगा, राग शब्द उच्चारण कर सारे भूतों का नाम उच्चारण करने के लिए कौन हो, वाग है, वाग वे गायती गान करती है, सारे भूतों को गायती मतलब शब्द उच्चारण शब्द कर, यह गौ है, ये अश्व है, घट है, पट है, सूर्य है, चंद्र है, जो उच्चारण करेंगे कौन, वाग ही उच्चारण करती, तो वाग वे गायती उसका नाम गायत्री क्यों हुआ, सब सब कुछ गायत्री क्यों, क्योंकि सबको वाग गान करती है, वाग भी इदम सर्वम भूतम गायती गान करते कथन करते उच्चारण करते हैं, और त्रायते च रक्षा भी करते हैं, कोई किसको अभय कर देता है निर्भय कर देता है क्या बोलेगा, मां भैसी रीतिवादी धरो मत, कोई चिंता नहीं करो हमें कोई परवाह नहीं करो, शब्द से तो साथ देते हैं मैं हूं तुम्हारे तकलीफ तो मैं साथ दूंगा, ये शब्द के द्वारा ही रक्षा करते हैं, कहते हैं भय निर्भय करते हैं, तो वाग क्या होगा, सबका शब्द कथन भी करने वाला और सबको भय से निवृत्त करने वाली, त्रायते का रक्षा करती है, तो वाग के द्वारा ही रक्षा होती है, इसलिए वाग हो गया गायती च त्रायती च, इसे गायत्री वाग गायती और त्रायती इसे वाग है गायत्री, और सारे सबको गान करने वाले रक्षा करने वाले सारे हो गए गाना त्राणा च गायत्री, सब कुछ गायत्री हो गई, या वैसा गायत्री यम वावसा येयम पृथिव्यांगीदम सर्वम भूतम प्रतिष्ठितम एतामेव नातिशीयते, या वैसा गायत्री जो गायत्री है सारे सर्वभूत रूप गायत्री का, गायत्री वाइदम सर्वम भूतम सारे भूत रूप जो गायत्री का, ये गायत्री कौन है, यम वावसा यही गायत्री है, कौन ये यम पृथ्वी, ये जो पृथ्वी ही गायत्री है, पृथ्वी कैसे गायत्री, गायत्री तो सारे भूतात्मा को पृथ्वी कैसे हुआ, अस्यां ही इदम सर्वम भूत प्रतिष्ठितम, पृथ्वी में सारे कुछ चराचर सावर जंगम सारे सब पृथ्वी में प्रतिष्ठित है, एताम एव नातिशयते इसको अतिक्रम को नहीं करता, जो पृथ्वी में है सब इसमें स्थित है, जिस प्रकार गायत्री हो गया सबका गान करने वाले सब को रक्षा करने से भूत संबंधी गायत्री, इसी प्रकार सारे भूत का अधिष्ठान रूप होने के कारण ये पृथ्वी हो गई गायत्री, या भी सा पृथ्वी यम बाबसा यदिदम अस्मिन पुरुषेश्वर इदम अस्मिन ही में प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते, जो सा पृथ्वी कहा गया गायत्री शब्द सर्व कुछ गायत्री, जो गायत्री है पृथ्वी है, जो सा या वैसा पृथ्वी यम भाव सा यही वह है, कौन है, यद इदम अस्मिन पुरुषे शरीरम इसी पुरुष में है, शरीर है अस्मिन ही में प्राणापति, ये शरीर हुआ पुरुष का जो शरीर है यही है। पृथ्वी से पार्थिव होता शरीर, पांच भौतिक शरीर तो है, ये हमारा शरीर पार्थिव पृथ्वी भाग अधिक है। जल में रहने वाले जलीय शरीर, तेज में वायु में रहने वाले वायुवीय शरीर, अलग अलग भूत प्रधान, यह पार्थिव शरीर पांच भूत होने पर भी पृथ्वी भाग अधिक है। इसलिए पृथ्वी से बना हुआ शरीर यही हो गया पृथ्वी सार, यही है गायत्री। और क्यों और क्या हुआ गायत्री कैसे, क्योंकि पृथ्वी में ही इमें प्राण प्रतिष्ठित। जिस प्रकार पृथ्वी में सारे भूत भौतिक प्रतिष्ठित है, इसी प्रकार पार्थिव शरीर में प्राण प्रतिष्ठित इंद्रियादि से प्रतिष्ठित होने से ये शरीर हो गया गायत्री, कोई इसको अतिक्रम नहीं करता था, सारे प्राण शरीर में रहते। यद्वि तत्पुरुषे शरीरम इदम भाव तद यदम अस्मिन अंत पुरुषे हृदय अस्मिन ही में प्राण प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते। जब पुरुष में पुरुष पार्थ शरीर हुआ पार्थिव शरीर हुआ, इदम भाव तद यही हुआ है कौन यदम अस्मिन अंत पुरुषे हृदय, जो अंदर है पुरुष के अंदर है हृदय है पुंडरी का कमल रूप है वही गायत्री है। कैसे है अस्मिन ही में प्राण प्रतिष्ठिता, इसी में ही प्राण प्रतिष्ठित है, हृदय होने पर ही प्राण रहता है नहीं तो नहीं। एतदेव नातिशीयते और इसी शरीर के समान गायत्री हो गया हृदय, इसको कोई प्राण अतिक्रम नहीं करता है। प्राणाह पिता प्राणो माता, ये सोचते हैं भूत शब्द जितने सब प्राण है इसी में आश्रित है, सारे भूत उसमें स्थित है। सही सा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदितदृचा अभ्यनुक्तम, ये चतुष्पदा गायत्री चार पाद वाले, एक एक पाद में छह छह अक्षर षडक्षर पदा, ये छंद रूप है। ये जो गायत्री है षड्विधा, पहले वाक भूत पृथ्वी शरीर हृदय प्राण वाक भूत पृथ्वी शरीर हृदय प्राण, इच्छे हो गया षड्विधा। वाक प्राण तो कहेंगे अन्य के लिए, तो भी छह प्रकार होने के लिए गायत्री में उसको रखा, छह हो गया ये षड्विधा गायत्री। तद एतद ऋचा अभ्यनुक्तम, इसी को ही ऋचा श्लोक मंत्र के द्वारा कहा गया, ये सारे कुछ गायत्री है। तावानस्य महिमा ततो जायांश पुरुष पादस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवीति, ये मंत्र जो गायत्री नाम का ब्रह्म कहा, तावान अस्य महिमा, ये सारे एक महिमा विस्तार इतने है गायत्री का, इतने है ततो जायांश पुरुष, उससे बढ़कर के ये तो सब हो गए गायत्री, सारे छह प्रकार गायत्री जितने सब हो गए सारा ब्रह्मांड हो गया, उसका विकार जितने हो गया सारे भूत भौतिक सब कुछ होगी, उससे बढ़ करके बड़ा है जो परमात्म सत्य है, जो कोई विकार कार्य नहीं वो पुरुष है। सारा ब्रह्मांड हो गए गायत्री, उससे बढ़ करके पुरुष, ये भूत भौतिक प्रपंच जितने है सब उससे बड़ा है, उससे बढ़ करके उनका अधिष्ठान ब्रह्म। पादोस्य सर्वभूतानि, ये पुरुष का एक पादे संपूर्ण भूत, चराचर जगत सारा ब्रह्मांड परब्रह्म में एक अंश में आश्रित है, एक भाग में सर्वभूतानि एक पादे, और उससे तीन पाद अमृतम जिसमें कोई विकार नहीं अमृत है दिव्योतनवती स्वयं प्रकाश स्वस्वरूप में स्थित है। ये जो सारे ब्रह्मांड है इसको एक अंश एकाग्र स्थित हो जगत, सारे जगतों को एकांश में धारण करने परमात्मा है। सारे चौदह भुवन ब्रह्मांड इस शुद्ध पुरुष के एक पाद में है, एक पाद चौथा एक अंश में, एक अंश में है और तीन पाद उससे अलग है जिसमें कोई विकार नहीं। वो तीन पाद फिर कहाँ है, स्वयं प्रकाश स्वरूप स्वस्वरूप में स्थित दिवी, दिवी का द्योतन प्रकाश, प्रकाश स्वरूप में स्थित है, प्रकाश स्वरूप तो उसका स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप में स्थित कहा था स्वस्वरूप में स्थित है, उसमें स्वयं प्रकाश स्वस्वरूप स्थित। यद्वै तद् ब्रह्मेति इदं भाव तद् यो यम बहिर्धा पुरुषादाकाशो, यो वैसा बहिर्धा पुरुषादाकाश। यद्वै तद् ब्रह्म त्रिपाद अमृतम कहा गायत्री मुख से कहा, सारा ब्रह्मांड को गायत्री रूप कह करके इतना उसका महिमा है, उससे जाया नहीं पुरुष। सारे ब्रह्मांड एक पाद में तो तीन पाद अलग है, तीन पाद जो अलग है गायत्री मुख से कहा ब्रह्म यही वह है। कौन है? योयम बहिर्धा पुरुषाद आकाश, बाहर प्रसिद्ध पुरुष आकाश भौतिक जो है बाहर पुरुष से आकाश है वही है यो यह स बहिर्धा पुरुषाद आकाश। पुरुष के बाहर आकाश है, पुरुष के बाहर आकाश है और अंदर भी। अथ भाव स यो अयम अंत पुरुष आकाश हो, यो भी स अंत पुरुष आकाश और ये अंदर पुरुष के अंदर भी आकाश है, पुरुष में शरीर आकाश है पुरुष में स्थित। अयम भाव स यो ये मंत्र हृदय आकाश तद एतत् पूर्णम अप्रवृत्ति, पूर्णम अप्रवृत्ति नहीं सीएम लभते यम वेद। और यही है अंतर हृदय आकाश, हृदय के अंदर जो आकाश है वही है। तदेतत् पूर्णम ये पूर्ण है भरा हुआ परिपूर्ण रूप है। हृदय के अंदर जो आकाश है वो परिपूर्ण है, जो चिन्ह मात्र हृदय में है वो एक अंश नहीं छोटा नहीं है, तो परिपूर्ण है पूर्णम। अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति किससे कहीं प्रभुता नहीं होता है, सर्वत्र उसका उच्छेद नहीं होता है, कहीं गमनागमन कुछ नहीं। ये जो कहीं गमनागमन हो जाएगा इधर उधर जाएगा तो कभी उच्छेद हो जाएगा, प्रभुता नहीं होता है, कहीं से प्रभुता नहीं होता है, कहीं नहीं जाता है, उसमें कोई व्यापार नहीं होता है, निर्व्यापार निष्क्रिय है। और उच्छेद धर्म ने व्यापक स्वरूप है, इसकी जो उपासना करता है जो ब्रह्म पर है, सारे ब्रह्मांड एक पाद में तीन पाद आगे है, वो तीन पाद मिली आकाश शुद्ध परिपूर्ण ब्रह्म अंदर बाहर एक है, सारा बाहर ब्रह्मांड आकाश भी वही है, हृदय के अंदर वही है, जो द्विग रूप चेतन है वही चेतन एक है सबके अंदर है। इसकी जो उपासना करता है अभी पूर्ण अप्रवर्तनी स्वयं लभते, पूर्ण प्रवृत्ति अनुच्छेद धर्म का विभूति को प्राप्त करता है। ये विभूति ऐसा जो प्राप्त करता है कहा गया ये गौण फल है। पूर्णा प्रवृत्ति ब्रह्म को जो जानता है, जीते जी जो जानता है, जीवित अवस्था में तद्रूप को प्राप्त कर लेता है, परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, सारे गायत्री उपासना करके उसका जो अधिष्ठान है तीन पाद अमृत है वही है, दिखाते है जो अमृत शुद्ध ब्रह्म है हृदय आकाश में वही स्थित है, जो हृदय में अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्र से भारत, जो क्षेत्र रूप स्वरूप है आप बुद्धि के साक्षी रूप है वही ब्रह्म है, वही पूर्ण है, वही नित्य है। जो इसकी उपासना करता है केवल साक्षात्कार नहीं करता है तो केवल इसे विस्तार को प्राप्त करता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। किन्तु इसको जो साक्षात्कार ज्ञान प्राप्त कर लिया जीते जी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जीवन मुक्त कहते हैं। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म स्वरूप को जीते जी प्राप्त कर लेता है, ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया, अप्राप्त वास्तव है ही नहीं अपना स्वरूप, अज्ञान के कारण अप्राप्ति का ब्रह्म होता है, अप्राप्ति ब्रह्म नष्ट हो गया तो प्राप्त हो गया, जीते जी तद ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह जो सद्य मुक्ति ज्ञान से सद्य है ब्रह्म प्राप्ति मुक्ति, यही जीते जी वो देखता है कि ये मेरे में बंधन कभी हुआ ही नहीं, बंधन है ही नहीं, पहले भी नहीं था। राज्य में सर्प देखकर डर कर भाग जाते हैं, राज्य को देखने से कहते हैं नायम सर्प, ये सर्प है ही नहीं, कोई नहीं कहता है अभी ये सर्प नहीं, ऐसा कोई कहेगा? अभी सर्प नहीं, पहले तो था अभी सर्प नहीं, ऐसा नहीं, ये सर्प है ही नहीं, अर्थात नासी नस्ति नास्ति न भविष्यति, ना पहले सर्प था ना अभी सर्प है ना आगे सर्प होगा, तीनों काल में ये सर्प है ही नहीं। रज्जु किस समय सर्प हो जाती है? भ्रांति काल में, किसी काल में रज्जु तो रज्जु है, सर्प क्यों होगी? भ्रांति आपकी गलती से भ्रांति, आप दौड़ो हाथ पैर तोड़ो, उसकी क्या, वो तो रज्जु रज्जु है। तरिकाली का निषेध होता है, इसी प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है वो नहीं मानता कि मैं पहले बद्ध था अनादिकाल से अभी मुक्त हो गया, वो देखता है मेरे में तो बंधन है ही नहीं, मैं तो नित्य मुक्त हूं। और जो नित्य मुक्त पहले भी मुक्त था अभी भी मुक्त है, आगे बंधन होगा करे डरेगा? बंधन कौन दिया? बंधन हो नहीं सकता है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।